देखिए भाई किताब पर आगे सबक। किताबु सईद यहिल्लु सईदु कुल्ली दी नाबिं व दी मिखलबिं मिन कल्बिन औ बाज़िं व नहविहिमा قد مر في الذبائح معنى ذي الناب وذي المخلب ثم اعلم أن الخنزير مستثنى لأنه نجس العين وأبو يوسف رحمه الله تعالى استثنى الأسد لعلو همته والدب لخصاصته والبعض ألحق الحدأة به لخصاصته. كتاب الصيد सैद भाई, सैद का माना है शिकार करना, शिकार करना। तो इस किताब के अंदर, इस बाब के अंदर शिकार के अहकाम जिक्र फरमाएंगे मुसन्निफ भाई। तो सैद का माना है शिकार करना, इसी तरह वो हैवान जिसको शिकार किया जाए उसको भी सैद कह देते हैं, उस पर भी सैद का इतलाक होता है। वो क्या है? शिकार। जैसे वो फेल को सैद यानी शिकार कहते हैं, इसी तरह वो हैवान जिसको शिकार किया जाए उसको भी क्या कहते हैं? सैद यानी शिकार कहते हैं। तो यहां बहरहाल मस्दर के माना में है भाई, यहिल्लु सैदु कुल्ली दी नाबिं व दी मिखलबिं मिन कल्बिन औ बाज़िन व नहविहिमा। याद रखिए भाई, शिकार करना जायज है हर कछली वाले दांत के, हैवान के जरिए भी, और इसी तरह पंजों के जरिए जो शिकार करते हैं जो परिंदे उनके जरिए भी, मसलन उकाब वगैरह है, और वो हैवानात जो कछली के दांत हैं जिनके नोकदार दांत हैं जिनके जरिए शिकार करते हैं, जैसे कुत्ता है, चीता है और तेंदुआ वगैरह, इन सब के जरिए शिकार जायज है भाई। तो जी नाब कहते हैं, नाब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि नाब कछली के दांत को कहते हैं। ये हमारे सामने के जो चार दांत हैं, ऊपर के भी चार दांत और नीचे के भी चार दांत, इनके साथ जो दाएं बाएं दांत लगे हुए हैं वो जरा नोकदार हैं भाई, अगर आप गौर करें। इन दांतों को नाब कहते हैं और इसकी जमा अनियाब है, और उर्दू में इनको कछली के दांत कहते हैं। और मैंने बतलाया था कि जो हैवानात गोश्तखोर होते हैं उनके सारे दांत इस तरह नोकदार होते हैं भाई, उनका एक भी दांत हमवार नहीं होता। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है और इसी तरह शेर है, आप इनके दांतों पर गौर कर लें, सारे नोकदार दांत होंगे, एक भी दांत हमवार नहीं। और जबकि इसके मुकाबले में गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इनके दांत अगर आप देखें तो एक भी नोकदार दांत नहीं है, सारे दांत उनके हमवार हैं भाई। वजह इसकी ये कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह ने घास और पत्ते वगैरह खाने हैं और उनके लिए हमवार दांतों की जरूरत है, तो अल्लाह ने उनको हमवार दांत दिए। और कुत्ते, बिल्ली वगैरह और शेर, इन्होंने गोश्त खाना है, शिकार करना है, तो इनको गोश्त को चीरने फाड़ने के लिए नोकदार दांतों की जरूरत थी, तो अल्लाह ने इनको नोकदार दांत दिए। और इंसान को अल्लाह ने दोनों तरह के दांत दिए, जिसमें इशारा है कि ये गोश्त भी खा सकता है और सब्जी भी खा सकता है। तो इसमें उन लोगों का भी रद्द हो गया कि बाज लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं और वो कहते हैं कि ये इंसान जो लड़ाइयां करता है, जंगें करता है, कत्लो गारत करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो गोश्त खाता है। तो गोश्त खाने से इंसान में हैवानियत पैदा हो जाती है और इसलिए वो कत्लो गारत वगैरह करता है। हालांकि उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है, ये अल्लाह ने दोनों तरह के जब दांत दे दिए तो इसमें ही इशारा कर फरमा दिया कि इंसान गोश्त भी खा सकता है और सब्जी वगैरह भी खा सकता है। और अगर सब्जी खाने से की वजह से इंसान कत्लो गारत न करता तो फिर हिटलर जो था उसने भी, वो भी कत्लो गारत जरा भी न करता, हालांकि वो दुनिया के बड़े कातिलों में से एक है जिसने बेइंतहा लोगों को कत्ल किया भाई, और वो हालांकि सब्जी खोर था भाई, वो गोश्त खाता ही नहीं था। तो ये मालूम हुआ कि ये उनकी बात सही नहीं है। और अल्लाह ने भी गोश्त खाने की जो इजाजत दी है तो हर हैवान के खाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि इंसान जो खाता है वाकई उस पर उसका असर पड़ता है, उसकी आदत पर, उसकी खसलतों पर असर पड़ता है। तो चुनांचे अल्लाह ने भी जो गोश्त खाने की इजाजत दी है वो चंद हैवानात, गाय, बैल, बकरी वगैरह, हिरन, इन चीजों के गोश्त खाने की इजाजत दी है। और ये सारे बेजरर जानवर हैं भाई, तो इनमें तकलीफ देने वाली सिफात ही नहीं, अगर वो सिफात होती तो इंसान की तरह मुंतकिल होती। और जिन जानवरों में ऐसी खौफनाक सिफात हैं, मतलब चीरने फाड़ने वाली, उनके खाने से ही अल्लाह ने मना फरमाया है। देखो कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह सबका खाना क्या है, हराम है भाई। तो बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था कि नाब जो है ये कछली के दांत को कहते हैं, जो नोकदार दांत होता है, और जीनाब कछली के दांतों वाला, और इससे दरिंदे मुराद हैं जो नोकदार, जिनके नोकदार दांत होते हैं और इनके जरिए वो शिकार करते हैं। तो हर कछली वाले दांत के जरिए जो शिकार करने वाला दरिंदा है उसके जरिए शिकार करना जायज है। यानी अगर आप उसको तरबियत दे देते हैं और वो आपके लिए हैवानात को शिकार करता है तो ये शिकार जायज है। बात समझ में आ गई? हर कछली वाले दांत के जरिए, कुत्ता है, चीता है, तेंदुआ है, शेर है, जिसके जरिए भी आप, जिसको भी आप तरबियत दे देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जरिए शिकार कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको बतलाएंगे कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने शेर का इस्तेस्ना किया, क्योंकि शेर की हिम्मत बड़ी ऊंची होती है, वो ताकतवर हैवान है तो वो किसी और के लिए शिकार नहीं करता। जो हैवान शिकार करेगा वो कैसे करेगा, वो यकीनन किसी हैवान दूसरे को जब पकड़ेगा तो उसको खाएगा नहीं, बल्कि जो मालिक है उसके लिए रोक कर रखेगा। लेकिन शेर की हिम्मत कहते हैं बड़ी ऊंची होती है, वो जंगल का बादशाह है, वो किसी दूसरे के लिए रोकता ही नहीं है भाई। तो कहते हैं हर जीनाब के जरिए भी शिकार हलाल है, और इसी तरह जी मिखलब के जरिए भी शिकार हलाल है। मिखलब पंजे को कहते हैं भाई, जी मिखलब पंजे वाला, पंजे वाला भाई, पंजे वाला तो हर परिंदा होता है, हर परिंदे के पंजे होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, चिड़िया के भी पंजे हैं, कौवे के भी पंजे हैं, लेकिन मुराद जी मिखलब से हर पंजे वाला परिंदा मुराद नहीं है, बल्कि वो परिंदे मुराद हैं जो पंजों के जरिए शिकार करते हैं। जो क्या करते हैं, पंजों के जरिए शिकार करते हैं, जैसे उकाब है, शिकरा वगैरह, ये क्या करते हैं, दूसरे हैवानात नीचे चल फिर रहे होते हैं, ये फजा से आते हैं, उन पर हमला करते हैं और अपने पंजों में उनको दबोच कर उठा कर ले जाते हैं। तो वो जी मिखलब मुराद हैं जो पंजों के जरिए शिकार करते हैं। तो कहते हैं यहिल्लु सैदु कुल्ली दीनाबिन वदी मिखलबिन, और हलाल है शिकार हर कछली के दांतों वाले हैवान का, वजीन नाबिन, और हर पंजों के जरिए शिकार करने वाले परिंदे का, मिनकल बिन औ बाजिन, यानी के कुत्ता या बाज, व नहविहिमा, या इस जैसे और हैवान और परिंदे भाई। बाज भाई जिसको आप उकाब कहते हैं, ये बहुत बड़ा परिंदा है, और बाज किस्में तो इसकी इतनी बड़ी होती हैं कि ये आम बकरी के छोटे बच्चे को भी आसानी से उठा कर ले जाते हैं भाई। तो इनके लिए शिकार जायज है। कहते हैं कद मर्रा फिर जबा यही माना दिन्ना भी व दिल मिखलबी, कहते हैं किताबु जबाह के अंदर जीनाब और जिल मिखलब का माना गुजर चुका है, मैंने दोबारा तफसील बयान कर दी। सुम मालम फिर तू जान ले कि अन्नल खिंजीर मुस्तस्नन, के खिंजीर मुस्तस्ना है, उसके लिए शिकार करना जायज नहीं, क्योंकि जीनाब कहा किसके, जिसके कछली के दांत होते हैं और खिंजीर के भी कछली के दांत होते हैं, तो क्या उसके लिए शिकार जायज है? तो बतला दिए कि नहीं भाई, खिंजीर क्या है, मुस्तस्ना है, उसका इस्तेस्ना किया गया है भाई। क्यों? कहते हैं ली अन्नहु नजसुल आईनी, क्योंकि वो नजसुल आयन है, उसकी जात ही नजस है, उसकी जात ही नजस है, उसके किसी जुज से या किसी तरह भी उससे नफा उठाना जायज नहीं है। और हैरत की बात है भाई, अल्लाह अल्लाह, मगरिब, मगरिब में खुसूसन जो जो ताकतवर लोग हैं, खुसूसन यहूद जो हैं, जो साजिशें, जिनकी सारी उम्र साजिशों में गुजरती है भाई, अजीब कौम है, इंसान हैरान होता है, جن کی زندگی ہی سازشوں میں گزرتی ہے، شیطانی کاموں میں گزرتی ہے، اور انہوں نے خنزیر، جسے اسلام نے بالکل ہی منع کر دیا، جسے نفع اٹھانے سے اس کو نجس العین کہا، اسی کو سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں بھائی، سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں کھاتے اس کو، لیکن دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں، ہر طرف خنزیر ہی کا گوشت پھیلا رہے ہیں. اور اب تو میڈیکل نے بھی بتلا دیا کہ خنزیر کا گوشت انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ گائے وغیرہ جو چارہ کھاتی ہے وہ چارہ ہضم ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اب میرے ذہن میں نہیں لیکن کافی زیادہ گھنٹے لگتے ہیں بھائی، یعنی وہ خوب وہ جو اجزاء ہیں اچھی طرح ہضم ہو جاتے ہیں بھائی. اور پھر گائے وغیرہ، آپ نے ان کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بعد میں جب گھاس کھانا بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی بیٹھے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے اپنا منہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ جس کو جگالی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہی جو کھایا ہوتا ہے وہ پھر واپس ان کے وہ منہ میں آتا ہے اور اس کو اور زیادہ وہ خوب چباتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں. تو وہ جو خوراک ہوتی ہے وہ خوب اچھی طرح ان کے جسم کا جز بنتی ہے، اس میں کوئی جراثیم وغیرہ باقی نہیں رہتے بھائی. جبکہ خنزیر جو کچھ کھاتا ہے فوراً وہ اس کے جسم کا جز بنتا ہے، تو اس میں بہت سی قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں بھائی، بیماریاں. اور پھر عجیب عجیب بھائی، انسان جتنا دیکھتا ہے، جو جو ترقی ہو رہی ہے انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی، حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ذبح کے ذریعے جب ہم حیوان کو ذبح کرتے ہیں، خون نکال دیتے ہیں، تو اس کا گوشت بڑا ہی بہترین باقی بچ جاتا ہے، جبکہ باقی لوگ جو ہے ذبح وغیرہ کرتے ہیں دوسری قومیں، دوسرے مذہب والے، وہ یہ خون وغیرہ کو تو نہیں دیکھتے، وہ تو یا ماتھے پر گولی مار دی یا کوئی اور طریقہ جس سے خون نہیں نکلتا سارا بدن سے، اور پھر وہ ان کا گوشت بھی بڑی جلدی گلنے لگتا ہے. اور یہ تو باقاعدہ تجربات کیے انہوں نے بعض ممالک، فرانس وغیرہ میں بڑی بڑی جو کمپنیاں تھی گوشت کی اور سپلائی کرنے والی، انہوں نے تجربہ کیا باقاعدہ کہ بعض حیوانات کو ذبح کیا، اور بلکہ اصل تجربہ مصر میں کیا گیا، بعض حیوانات کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا اور بعض کو کفار کے طریقے سے ان کو مارا گیا، اور سائنسدان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کو عام طریقے سے مارا گیا تھا اس کا گوشت چند گھنٹوں میں ہی، بلکہ چند گھنٹے بھی نہیں، اس سے بھی پہلے کالا ہونا شروع ہو گیا، یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں اس کا گوشت کالا پڑنا شروع ہو گیا، اور جس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا اس کا گوشت کئی گھنٹے اس سے زیادہ صحیح صحیح رہا بھائی، یعنی یوں سمجھیں وہ گوشت اگر 2-3 گھنٹے میں ان کا وہ کالا ہونا شروع ہو گیا، لیکن جس حیوان کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا وہ 12-18 گھنٹے تک وہ اسی طرح رہا، اور یہ اچھا خاصا وقت میں ہے جس میں گوشت کو آرام سے انسان فریج وغیرہ میں محفوظ کر سکتا ہے بھائی. تو وہ پھر یہ تجربات شائع ہوئے، اور پھر فرانس کی بعض بڑی بڑی کمپنیاں جو پوری دنیا میں گوشت بھیجنے والے تھے، ان کو تو بڑا مسئلہ تھا کہ گوشت جتنی جلدی خراب ہو جائے گا وہ پھر ان کے نقصان ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر باقاعدہ اس کی تفصیلات لیں اور پھر خود تجربات کی، اور واقعی ان کو پتہ لگا کہ یہ تو حقیقت ہے، چنانچہ اب وہ کمپنیاں کفار کی، لیکن انہوں نے مسلمان علماء اور لوگوں کو اپنی کمپنی میں متعین کر دیا کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے ہمارے حیوانات اسلامی طریقے سے ذبح ہوں بھائی. تو وہ اب اس طریقے سے ذبح کر کے گوشت دے رہے ہیں، اور ان کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ گوشت جلدی خراب نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا ہے آسانی سے. اچھا جی، چلیے جی آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں ثم معلم ان الخنزیر مستثنا لانه نجس العين، پھر تو جان لے کہ خنزیر جو ہے اس کا وہ مستثنا ہے، یعنی اس کا شکار حلال نہیں، لانه نجس العين، کیونکہ اس کی ذات ہی نجس ہے، وہ نجس العين ہے، عين یعنی ذات، نجس العين یعنی اس کی ذات ہی کیا ہے، اس کی ذات ہی نجس ہے. وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَثْنَى الْأَسَدَ، اور امام ابو یوسف رحم اللہ نے شیر کا بھی استثناء کیا ہے کہ شیر کا شکار بھی حلال نہیں، کیوں؟ لِعُلُوِّ ہِمَّتِهِ، उलू का माना ऊंचा होना, इस वजह से क्योंकि उस शेर की हिम्मत बड़ी ऊंची होती है, वो किसी की गुलामी नहीं करता। किसी की गुलामी आप जितनी भी कोशिश कर लें वो आपके लिए शिकार नहीं करेगा, वो जब भी शिकार करेगा खुद उसको खाएगा। बात समझ में आ गई? तो उन्होंने इस्तिस्ना किया शेर का, उलूव हिम्मत ही बवजह उसकी हिम्मत और जुर्रत के ज्यादा होने के, ऊंचा होने के। वह दुब्बा, और इसी तरह उन्होंने इस्तिस्ना किया है रीछ का भाई, दुब दुब उन किसको कहते हैं, रीछ भाई जो हो काले रंग के बड़े बड़े बाल होते हैं आपने देखा होगा, उसका इस्तेसना किया इमाम यूसुफ ने लिखसासती ही उसके कमीने पन की वजह से, क्योंकि रीछ कहते हैं बड़ा कमीना और घटिया जानवर है, यानी ये किसी के लिए शिकार नहीं छोड़ता, किसी के लिए नफा, किसी को नफा नहीं देता इस चीज के अंदर, इतना अदना है, इतना कमीना है, किसी और के लिए कोई चीज नहीं छोड़ता। शेर की हिम्मत बड़ी ऊंची है, वो किसी की गुलामी नहीं करता, और ये कमीनगी की वजह से किसी के लिए कोई चीज नहीं छोड़ता, तो इसलिए इसका इस्तेसना किया। तो कहते हैं वह दुब्बल खसासती ही, और रीछ का भी इस्तेसना किया है इसके कमीनेपन की वजह से। वल बाजू अल हकल ही दाता बिही, और बाज फुकाहा ने अल हका मिलाया है अल ही दाता चील को भी इसके साथ, बाज फुकाहा ने चील को भी इसके साथ मिलाया है। चील भी एक बड़ा परिंदा है, यहां तो आम आप लोग देखते हैं कि ये बुलंदी पर परवाज कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और ये भी कहते हैं बड़ा खसीस जानवर है, बड़ा खसीस परिंदा है भाई, ये भी नुकसान ही देता है किसी को फायदा, जैसे रीछ जो है नुकसान ही देता है अमूमन भाई। तो रीछ उसको लोग तरबियत तो कर लेते हैं लेकिन शिकार की तरबियत उसकी नहीं होती, वो किसी के लिए नहीं छोड़ता। बाकी तो उसके लिए मुख्तलिफ आप देखते हैं गली मोहल्लों में बाज लोग उसको सधा लेते हैं और फिर उसके लिए पैसे वगैरह लोगों से जमा करते हैं, मुख्तलिफ तमाशे उसके जरिए दिखाते हैं। तो इसी तरह चील है, चील भी बड़ा कमीना और अघटिया परिंदा है, कहते हैं ये भी बस नुकसान ही पहुंचाता है, बल्कि मालूम नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। आजकल तो खबरों में ये भी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सैकड़ों किलोमीटर में आग लगी हुई है भाई, और वो उनसे बुझ नहीं रही, और अब उनको उनका ख्याल ये है कि ये आग हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं बुझ जाए, ये खत्म नहीं हो रही। तो बाजों ने ये बात भी जिक्र की है कि ये चील जो है, चील ये उसको आग को फैला रही है, ये जलती हुई आग की लकड़ी को पकड़ती है और उसको उठाकर दूसरी जगह गिरा देती है जानबूझकर आग लगाने के लिए। तो देखा इस्लाम ने कितना अरसा कबल उसकी खसासत फुकहा ने हमारे बयान कर दी, इन लोगों को आज आकर उसकी खसासत का इलम हुआ, यानी ये नुकसान देने वाला परिंदा है। तो कहते हैं वल बाजू अल हकल हिदा तभी, और बाजों ने चील को भी इसके साथ मिलाया है लिखसासती ही उसकी कमीनगी की वजह से। वज़ाहिरु अन्नहु ला यहताजु इलल इस्तिस्नाई या अन्नहु ला यहताजु इलल इस्तिस्नाई, साहिब शरह के विकाया फरमाते हैं जाहिर ये है कि इनके इस्तिस्ना की एहतियाज नहीं, इनके इस्तिस्ना करने की जरूरत नहीं। क्यों? फइन्नल असदा व दुब्बा ला यसीरानी मुअल्लमैनी, इसलिए क्योंकि शेर और रीछ जो हैं वो कभी भी मुअल्लम नहीं बनते, यानी तरबियत याफ्ता नहीं बनते भाई, इस मामले में वो तरबियत कबूल नहीं करते। तो मुअल्लम जिसको तालीम दी गई है, यानी जिसको तरबियत दी गई है। तो कहते हैं ला यसीरानी मुअल्लमैनी, क्योंकि शेर और रीछ जो है ये दोनों तरबियत याफ्ता नहीं बनते। बिउलू विल हिम्मति वल खसासती, बवजह हिम्मत के ऊंचा होने और बवजह कमीनगी के। फलम यूजद शर्त हिल सईदी, लिहाजा शिकार के हलाल होने की शर्त ही नहीं पाई गई। शेर की अपनी हिम्मत ऊंची इसलिए वो तरबियत याफ्ता बनता ही नहीं, और रीछ जो है वो घटिया है, अदना है, कमीना है, इसलिए वो भी तरबियत याफ्ता होता ही नहीं। ये तरबियत को कबूल करते ही नहीं इस मामले में। जब तरबियत याफ्ता ही नहीं तो फिर इनका शिकार भी हलाल नहीं, क्योंकि शिकार के अंदर शर्त है कि जिस हैवान के जरिए आप शिकार करें वो तरबियत याफ्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये शर्त है। जब शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। तो जब ये तरबियत याफ्ता नहीं तो इनका शिकार भी हलाल नहीं। तो जब शिकार हलाल नहीं तो इनके इस्तिस्ना की जरूरत ही नहीं। ये कौन फरमा रहे हैं? साहिब शरह विकाया। ये माना है फलम यूजत शर्त हिल सैदी, बस शिकार के हलाल होने की शर्त ही नहीं पाई गई, लिहाजा इनके इस्तिस्ना की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही निकल जाते हैं। आगे देखिए, बिशर्त इल्मी हिमा व जर्ह हिमा अय्या मौज़िउ मिन्हु। बई शर्त कि इल्मी हिमा, कि ये दोनों, यानी चाहे वो दरिंदा हो या वो परिंदा हो, वो उनको इलम हो, यानी उनकी उनको तालीम दी गई हो। क्या दी गई हो? यानी उर्दू में आज बेहतरीन लफ्ज है, इनकी तरबियत की गई हो, यानी तरबियत याफ्ता हो। तो ये शर्त है शिकार, उसके लिए क्या शर्त है परिंदे और हैवान के जरिए कि वो तो ये माना है बिशर्त इल्मी हिमा, इन दोनों के तरबियत याफ्ता होने की शर्त पर, व जर्ह हिमा, और इन दोनों के जख्मी करने की शर्त पर, अय्या मौज़िउ मिन्हु, जो मकाम भी हो उस शिकार में से। यानी ये जरूरी है भाई कि ये कुत्ता या ये उकाब जो शिकार करें तो वो उस हैवान को जख्मी भी करें, उसके बदन से खून भी निकला हो। क्या निकला हो? ये माना जर्ह हिमा, ये शर्त है भाई। क्या माना शर्त है? उकाब एक परिंदा पकड़ लेता है और आप जाकर पहुंच गए और आपने उस परिंदे को पकड़ लिया, वो जिंदा था, आपने जिबा कर लिया, हालांकि उसके बदन पर एक भी जख्म नहीं लगाया था उकाब ने, तो क्या वो हराम होगा? नहीं, उस जिंदा की बात नहीं कर रहे। अगर ये शिकार करते हैं और हैवान को मार देते हैं, कुत्ते ने हैवान को पकड़ा लेकिन उसको मार दिया, शिकारी जब पहुंचा वो मर चुका था, उकाब ने शिकार किया, कोई खरगोश वगैरह पकड़ा या कोई हिरन का बच्चा पकड़ा लेकिन शिकारी पहुंचा तो वो हिरन का बच्चा मर चुका था, उकाब ने उसको मार दिया था। तो क्या अब ये जो हिरन का बच्चा मर गया या वो जो कुत्ते ने शिकार किया जो मर चुका है शिकारी के पहुंचने से पहले, वो हलाल है या हलाल नहीं? तो याद रखें, उसमें शर्त है उसके जख्मी होने की, ताकि उसके बदन से खून निकला हो। क्या निकला हो? खून निकला हो। हां, अगर आप पहुंच गए और वो हिरन का बच्चा जिंदा था या वो खरगोश जो उकाब ने पकड़ा वो जिंदा था और कोई जख्म का निशान भी उस पर नहीं है, तो फिर तो खुद आप उसको पकड़ लें भाई, वो आपके काबू में आ गया। अब चाहे उसको वैसे रखें चाहे उसको जिबा कर लें, तो उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ये किस हैवान की बात हो रही है जो शिकारी के पहुंचने से पहले ये शिकार करने वाला हैवान उनको मार दे, कत्ल कर दे। बात समझ में आ गई भाई? देखिए, ये तफसील पहले बयान हो चुकी है, किताबुल ज़बाह में गालिबन तफसील आई थी कि एक ज़बह इख्तियारी है एक ज़बह इज़तिरारी, और वहां आपने पढ़ा था एक लफ्ज़ है ज़बहुन ज़ाल के फतहा के साथ और एक है ज़िबहुन ज़ाल के कसरा के साथ। तो ज़बहुन इसका माना है जिबा करना और ज़िबहुन ज़ाल के कसरा के साथ हो तो वो उस हैवान को कहते हैं जिसको जिबा किया जाता है। तो ज़बह जो है ये दो किस्म पर है, एक ज़बह इख्तियारी और एक ज़बह इज़तिरारी। ज़बह इख्तियारी आपने पढ़ा कि जो हैवान आपके काबू में है जिसके जिबा करने पर आप कादिर हैं तो उसकी गर्दन की चार रगें काटेंगे या चार में से कम तीन काट देंगे तो और ताकि खून सारा निकल जाए, तो ये ज़बह है, ये ज़बह इख्तियारी है, और नीज अल्लाह का नाम भी लेना है ज़बह करते हुए। और एक है ज़बह इज़तिरारी, यानी मजबूरी के आलम में एक हैवान आपके काबू में नहीं है, आप उसको मारना चाहते हैं ज़बह करना चाहते हैं, मसलन जैसे हिरन है जंगल में, तो फिर उसका शिकार करते हैं आप किसी दरिंदे के जरिए या उकाब के जरिए या आप तीर कमान तीर वगैरह के जरिए आप उसका शिकार करते हैं। तो इस सूरत में ये जो कुत्ता जाकर उस दरिंदा जाकर उस हिरण को पकड़ता है, उसको जख्मी करता है, तो ये दरिंदा या उकाब जाकर उसको पकड़ता है, तो ये दरिंदा या उकाब जो है ये आपका आला है, आलाए ज़बा है। ये क्या है? आलाए, अब
जबा।
इसके जरिए आप उस हैवान को जिबा कर रहे हैं। लिहाजा इसमें जरूरी है कि जब आप इस कुत्ते या उकाब को छोड़ें तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कहें, अल्लाह का नाम लें। अगर जानबूझकर अल्लाह का नाम न लिया और इस कुत्ते ने जाकर हिरन को शिकार किया और फिर जब तक आप पहुंचे तो वो हिरन मर चुका था, कुत्ते ने उसको जख्मी इतना ज्यादा कर दिया कि पहुंचने से पहले मर गया, तो याद रखिए ये हराम है, क्योंकि आपने इस जबह इज़तिरारी में आले पर अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो याद रखो, एक है जबह इख्तियारी और एक क्या है जबह
इस्तेमाल
जबह इज़तिरारी में आले पर तस्मिया पड़ी जाती है। किस पर? वो आला, वो चीज जिसके लिए आप शिकार कर रहे हैं। अगर आप कुत्ते के लिए शिकार कर रहे हैं तो कुत्ते को छोड़ते हुए आपने अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर। अगर आप उकाब के लिए शिकार कर रहे हैं तो उकाब को छोड़ते हुए आपने अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर। और अगर आप तीर कमान के लिए शिकार कर रहे हैं तो तीर चलाते वक्त आपने क्या कहना है? बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर। तो जबह इज़तिरारी में वो जो आला है, आलाए शिकार, उस पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी, जबकि जबह इख्तियारी में मजबूह जो जानवर है उस पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। किस पर? तवज्जो है, जबह इख्तियारी में किस पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी? मजबूह पर, आले पर नहीं, मजबूह पर। मसलन देखो, एक शख्स के पास एक ही छुरी है और एक ही छुरी से वो दो बकरियां जिबा करता है। अब आला एक, मजबूह दो, और ये जब इख्तियारी है या इज्तिरारी है? इख्तियारी। लिहाजा दोनों मजबूह पर अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगी। एक बकरी को जिबा करते हुए भी कहेगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, दूसरी को जिबा करते हुए भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेगा। तो मजबूह का ख्याल रखना है, और अगर उसने आले का ख्याल रखा कि छुरी तो एक ही है, तो उसने एक ही दफा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा, पहली बकरी को भी जिबा किया और फिर दूसरी को भी जिबा, तो पहली तो हलाल हो गई, दूसरी क्या हो गई? हराम, क्योंकि उस पर उसने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कहा जानबूझ कर। भाई भूले से रह जाए फिर तो हलाल है, जानबूझ कर ना कहे फिर तो हराम। जबकि शिकार के अंदर जो जबह इज़तिरारी है उसमें अल्लाह का नाम किस पर लेते हैं? आले पर लेते हैं, और आला आपका या तो वो दरिंदा है या उकाब है या तीर कमान वगैरह है। सूरत समझ में आ गई? तो वो तीर है आपका। तो लिहाजा देखिए किताब पर, बिशर्त इल्म ही मा बई शर्त के वो उनके इल्म की शर्त हो, कि यानी कि वो तरबियत हो, उनकी तरबियत याफ्ता हो, व जर्ह ही मा, और बई शर्त के वो दोनों क्या करें? जख्मी करें। अय्या मौज अमीन हो, जौन सी जगह भी हो उसमें से। भाई जबह इख्तियारी में तो जरूरी है कि गले से गले को काटना है और चार रगें काटनी है, लेकिन जबह इज्तिरारी में आप ये ना कहें कि कुत्ता जाकर उसके गले को ही काटे, नहीं, जहां से भी उसको जख्मी कर दे और उसका खून निकाल दे। हां, अगर कुत्ते ने सिर्फ उसकी दोनों टांगों को खूब इतना जख्मी कर दिया कि उससे हिरन या वो हैवान मर गया, तो ये हैवान हलाल है, क्योंकि खून निकाला और भेजते हुए अल्लाह का नाम लिया था और फिर इसने हैवान का खून भी निकाला और इन्होंने बतला दिया, जहां से कहीं से भी उसको जख्मी करके उसका खून निकाल दे। ये माना है, अय्या मौज़े अमीन हो, जख्मी करे जौन सी जगह भी हो उस है शिकार में से। हादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला, ये तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है, यानी जख्मी करना जरूरी है। ये उस वो हैवान जो मर चुका है, जो हैवान आप पहुंचे तो मर, उसमें जख्मी करना जरूरी है। वअन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह अन्नहु ला यश्तरितुल जर्हु, कि जख्म शर्त नहीं है। वो फरमाते हैं कि जख्म शर्त, लिहाजा आपने कुत्ते को शिकार पर छोड़ा अल्लाह का नाम लेकर और उसने जाकर हिरन को एक मार दिया, आप पहुंचे हिरन मर चुका है, लेकिन देखा तो उसके बदन पर एक भी जख्म का निशान नहीं, मालूम हुआ इसने उसका गला गले से पकड़ा, गला दबाया है लेकिन खून नहीं निकला, जख्म नहीं हुआ। तो तरफेन क्या फरमाते हैं?
हराम है,
हराम हो
हराम
गया, हराम हो गया। और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, हलाल
हलाल
है,
है।
क्योंकि जख्म शर्त नहीं। लेकिन याद रखिए, फतवा तरफेन के कौल पर है, जख्म जरूरी है। अगर जख्म ना हो फिर आपका पहुंचकर जिबा करना जरूरी है, वह अभी जिंदा हो, मरा ना हो। अगर पहले मर चुका तो वह मुर्दार है। तो पहली शर्त क्या, तरबियत याफ्ता हो। दूसरी शर्त क्या, कि वो उसको जख्मी करें। वह इरसाल मुस्लिमिन औ किताबीन इयाहुमा मुसम्मियन। और नीज शर्त है मुसलमान का भेजना औ किताबीन या किसी अहले किताब का भेजना, इयाहुमा उनको, यानी उस दरिंदे या परिंदे को कौन भेजने वाला कौन हो, मुसलमान या अहले किताब यानी यहूदी या ईसाई, मुसम्मियन इस हाल में कि अल्लाह का नाम लेने वाला हो। ऐ ला यतरुकु तस्मियत आमिदन, यानी जानबूझकर अल्लाह के नाम को न छोड़े। भूले से रह जाए फिर तो जायज है, लेकिन जानबूझकर छोड़ता है तो बस। जाब्ता याद रखें, जिन लोगों का जबीहा खाना जायज, उनका शिकार भी जायज, लेकिन वही शर्त, जबीहे के अंदर अगर वो अल्लाह का नाम लेते हैं तो फिर ठीक। इसी तरह अगर वो यहूदी है या ईसाई है, शिकार करता है, और वो शिकार के लिए जो परिंदा या उकाब या दरिंदा भेजता है या तीर चलाता है, तो वो अल्लाह का नाम लेता है। तो जैसे यहूदी और ईसाई का जबीहा हलाल, इसी तरह इनका शिकार भी हलाल। तो कहते हैं वह इरसाल मुस्लिमीन, सब का आतफ वो इल्मी हिमा पर हो रहा है, ऐ बी शर्ती इरसाल मुस्लिमीन, और बाई शर्त के उसको मुसलमान भेजिए अहले किताब में से, इयाहुमा उन दोनों को, मुसम्मियन इस हाल में कि अल्लाह का नाम लेने वाले हों, ऐ ला यतरुकु तस्मियत आमिदन, यानी जान बूझ कर तस्मिया को न छोड़े, अला मुमतनिइन मुतवहिशी युकलु, ऐसे हैवान पर। देखो अजीब फुकाहा पर अल्लाह करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए भाई, कैसे कैसे चंद लफ्जों में कितनी लंबी बात समेट देते हैं। वो शिकार करने वाले दरिंदे या परिंदे को छोड़ें, कौन छोड़े, मुसलमान या अहले किताब, और क्या पढ़कर छोड़ें, अल्लाह का नाम लेकर, और किस पर छोड़ें, वो शिकार कैसा होना चाहिए। कहते हैं अला मुमतनिइन, ऐसा शिकार जो काबू में आने वाला नहीं, जो अपना बचाव करने वाला है। मुमतनिया का क्या माना, जो अपना बचाव करने वाला है, जो अपने आप को बचा सकता है, या तो उसके पांव है वो भाग जाता है, या उसका क्या है पर है वो उड़ जाता है, आपके काबू में ही नहीं आता। आप शिकार करते हैं, क्यों करते हैं शिकार, लोग क्यों करते हैं शिकार, क्योंकि वो जो हैवान है वो वहशी है, मुतवहिश है, इंसानों से दूर भागता है, अब उसको पकड़ना मुमकिन ही नहीं है, तो लिहाजा फिर किसी तीर का मान के जरिए शिकार करते हैं, या फिर किसी कुत्ते या उकाब के जरिए शिकार करते हैं। तो वो हैवान क्या होना चाहिए, मुमतने हो, यानी अपना बचाव कर सकता हो। तो देखो वो शिकार भी अपना बचाव करता है, कुत्ते वगैरह को देखते ही वो भाग जाएगा, अपने आप को बचाएगा, इंसान को देखते ही वो भाग जाएगा या उड़ जाएगा। तो मुमतनिया का क्या माना, कि वो अपना बचाव कर सकता हो। मुमतनिया वैसे लफ्जी माना तो है ना, मुमतनिया जो काबू में ना आए, यहां तर्जमा करने जो अपना बचाव कर सके। तो जब उस कुत्ते को छोड़ें या दरिंदे या परिंदे को छोड़ें, अला मुमतनिइन, ऐसे हैवान पर जो अपना बचाव कर सकता है, मुतवहिशिन, और नीज वो मुतवहिश है, यानी इंसानों से दूर भागता है, यू कलू, और उसको खाया जाता है, यानी उसका गोश्त क्या है, हलाल है। तो कहते हैं यश्तरी तो फिर सैती अयकून मुमतनी अन बिल कवा इमी अविल जना है नहीं। कहते हैं शर्त है शिकार के अंदर के वो मुमतनिया होना चाहिए, यानी काबू में आने वाला ना हो, यानी अपना बचाव कर सके, बिल कवा इमी अपने पांव के जरिए, अपनी टांगों के जरिए, अविल जना है नहीं अपनी दो अपने दो परों के जरिए, यानी वो भाग सके, उड़ सके, इंसान से दूर जा सके। तो दोनों शर्तें जरूरी हैं भाई, अजीब क्या, एक शर्त क्या, वो मुमतनिया हो, अपना बचाव कर सके, दूसरा क्या, मुतवहिश हो, इंसान से दूर भागता हो। दोनों शर्तें होंगी तो फिर कुत्ते या उकाब के जरिए वो शिकार जायज होगा, वरना शिकार जायज नहीं। कैसे, मसलन एक हिरन है, एक हिरन है वो आपके साथ मानूस हो गया, वो आपके पास आता है, आप जाते हैं। अब आप इस हिरन को जो आपके पास आता है कुत्ते के जरिए शिकार करते हैं, नहीं भाई, कुत्ते ने, कुत्ता गया और उसने इसको मार दिया आपके पहुंचने से पहले, तो हराम है। अगरचे उसने खून भी निकाल दिया, आपने भेजते हुए अल्लाह का नाम भी लिया और उसने खून भी निकाला उस हिरन का, आपके पहुंचने से पहले वो मर गया, तो वो हराम है। भाई क्यों हराम है? क्योंकि शिकार के लिए दो शर्तें बयान कर दी, क्या? मुमतनिया भी हो, मुतवाहिश भी हो। ठीक है, मुमतनिया ये अपना बचाव तो कर सकता है, हिरन की चारों टांगे थी या नहीं थी वो भाग सकता था, लेकिन मुतवाहिश वाली शर्त नहीं है, वो तो आपसे मानूस था, वो तो आपसे मुतवाहिश नहीं था, आप उसको वैसे भी पकड़ सकते थे, आप उस जब आप वो मानूस था तो आप तो जबह इख्तियारी पर कादिर थे, आप छुरी से जिबा कर सकते थे, फिर कुत्ते वगैरह तीर के जरिए उसको जबा करना ठीक नहीं, यानी जबह इस्तरारी जायज नहीं। दूसरी सूरत के पहली क्या थी? मुमतने और मुतवाहिश, मुमतने था, मुतवाहिश नहीं था, यानी मानूस था। अगर पहली शर्त ना हो, मुतवाहिश तो है लेकिन मुमतने नहीं, अपना बचाव नहीं कर सकता। मसलन आपने जाल फैलाया था, जाल के अंदर वो फंस गया, अब जाल के अंदर जो हिरन फंस गया है या कोई परिंदा फंस गया है, अब ये मुतवाहिश तो है, आपको आपसे दूर भागता है या नहीं? दूर भागता है, लेकिन क्या ये अपना बचाव कर सकता है? नहीं, ये तो फंसा हुआ है, आप इसके जब इख्तियारी पर कादिर हैं, लिहाजा इस जाल में फंसे हुए को कुत्ते के जरिए या तीर के जरिए मारने से ये क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब है इस तेरारी जायज नहीं। ये मानना है जब उस परिंदे या दरिंदे को छोड़ दें अल्लाह का नाम लेकर, अलामुम तनिम मुतवाहिशी यू कलू, ऐसे हैवान पर जो अपना बचाव कर सके और मुतवाहिश हो यानी दूर भागने वाला हो इंसान से, यू कलू उसका गोश्त खाया जाता हो। कहते हैं यश तरितु फिस सैद यकून मुमतनियान बिल कवायम या बिल जनाहैन, शर्त है शिकार के अंदर के वो मुमतने हो यानी अपनी बचाव कर सके, बिल कवायम अपने टांगों के जरिए, अविल जनाहैन या अपने दो परों के जरिए, फसादुल्लिस्ताना सा मुमतन गैर मुतवाहिशिन, बस वो शिकार जो मानूस हो गया वो मुमतनिया तो है, मुमतनिया तो है यानी अपनी बचाव तो कर सकता है, उसके पांव या पर तो ठीक होंगे, लेकिन गैर मुतवाहिशिन वो मुतवाहिश नहीं, आपसे भागने वाला नहीं है, दूर होने वाला नहीं। वह सैदुलवाकफी शबकती, और वो शिकार जो वाक हो जाए जाल में, शबका किसको कहते हैं? जाल, वो और वो शिकार जो जाल में वाक हो जाए यानी जाल में फंस जाए, वह साकितु फिल बेरी, और इसी तरह वो शिकार जो कुएं में गिर पड़े, किसमें गिर पड़े? आप हिरन के पीछे भाग रहे थे, वो कुएं में गिर गया, वल्लदी असखा न हो, और इसी तरह वो हैवान या असखा न हो जिसको शिकारी ने सुस्त कर दिया है, क्या कर दिया है? सुस्त यानी भाई मसलन एक हिरन था, आपने तीर चलाया, वो तीर उसको लग गया, अब वो जख्मी हो गया, उस तीर ने उसको सुस्त कर दिया, अब वो भाग नहीं सकता, आप जाए जाकर उसको पकड़ लें और पकड़कर फिर उसको क्या कर दें? जिबा कर दें। तो आप देखो आपने उसको सुस्त कर दिया है, तो सुस्त करने के बाद आप जिबह इख्तियारी पर कादिर हैं, लिहाजा जिबह इस्तरारी जायज नहीं। देखो ये मुतवाहिश तो है, मानूस तो नहीं आपसे, लेकिन क्या मुमतनिया है? अपना बचाव कर सकता है? नहीं, यह भाग ही नहीं सकता, तो इसके अंदर अब जिबह इख्तियारी ही जायज होगी, ये दरिंदे या परिंदे या तीर के जरिए इसको मारना जायज नहीं है, ये माना है। और इसी तरह वल्लदी असखन हो, और वो हैवान जिसको सुस्त कर दिया है, मुतवाहिश, वो मुतवाहिश तो है, दूर भागने वाला तो है, लेकिन गैर मुमतनियाइन, लेकिन अपना बचाव नहीं कर सकता, मुमतनिया नहीं है। लिखुरूज ही अन हय्यिज़िल इम्तिनाई, इसलिए क्योंकि वो निकल गया है, हय्यिज़िल इम्तिना किस से? हय्यिज़िल, हय्यिज़ का माना है जगह, जगह मकाम, महल, महल, और इम्तिना का क्या माना? बचाव करना, काबू में न आना। तो वो देखो बचाव के महल से निकल गया, अब वो अपना बचाव नहीं कर, यूं कहो वो काबू में न आना, इम्तिना का क्या माना कर ले? काबू, काबू में न आने के महल से निकल गया, और किस महल में आ गया? काबू में आने वाले महल में आ गया। क्या बेहतरीन तर्जमा कर ले? यूं कहो वो नामुमकिनुल हुसूल ना रहा, बल्कि क्या बन गया? मुमकिनुल हुसूल, तो वो काबू में आने वाला बन गया, वो हय्यिज़ुल इम्तिना से निकल गया। इम्तिना के मकाम से निकल गया है, ये जो जाल में फंस गया है या कुएं में गिर गया है जिसको आपने सुस्त कर दिया है कोई तीर वगैरह मारकर। वह अल्लाह युशारी कल कल बल कल बल मुअल्लमा जी, शिकार की शराइत जिक्र हो रही है। एक शर्त क्या कि वो तरबियत याफ्ता हो, दूसरी शर्त क्या वो जख्मी भी करें, अगर वो मर जाता है शिकार तो जख्मी भी करें, और तीसरा क्या कि उसको भेजने वाला मुसलमान हो या अहले किताब हो, चौथी शर्त क्या कि उसमें अल्लाह का नाम भी जिक्र करें, पांचवीं शर्त क्या कि वो हैवान जिस पर छोड़ें वो क्या होना चाहिए, मुमतने और मुतवाहिश होना चाहिए, और छठी शर्त यह है कि वह अल्लाह युशारिकल कल बल मुअल्लमा के शरीक ना हो उस तरबियत याफ्ता कुत्ते के साथ। कौन शरीक ना हो, कल्बुन ऐसा कुत्ता, ला यहिल्लु सैदुहु जिसका शिकार हलाल नहीं, उस कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता शिकार में शरीक न हो, ऐसा कुत्ता जिसका शिकार हलाल नहीं। मसलन आपने शिकार पर कुत्ता छोड़ा, आपका कुत्ता तो तरबियत याफ्ता है लेकिन साथ एक और आवारा कुत्ता भी साथ मिल गया, उसने मिलकर उसके साथ शिकार को पकड़ा, या उसके साथ एक मजूसी का कुत्ता मिल गया तो मजूसी का शिकार भी हलाल नहीं, तो उसके कुत्ते का शिकार भी हलाल नहीं। तो इस सूरत में याद रखो जब दोनों कुत्तों ने मिलकर शिकार किया है तो इस सूरत में ये शिकार हराम है, आपके पहुंचने से पहले मर गया तो ये क्या है, हराम। हां अगर आप पहुंच गए जिंदा है तो फिर जिबा कर लो, फिर तो जायज है। ये माने वल्ला युशारिकल कल्ब अल मुअल्लमा, शरीक ना हो जाए उस तरबियत याफ्ता कुत्ते के साथ। कल्ब ला यहिल्लु सैदुहु ऐसा कुत्ता कि जिसका शिकार हलाल नहीं, मिस्लु कल्बिन गैर मुअल्लमिन जैसे कि ऐसा कुत्ता जो तरबियत याफ्ता ना हो ये उसके साथ शरीक हो गया, औ कल्बि मजूसीन ये जैसे कि मजूसी का कुत्ता है वो उसके साथ शरीक हो गया, औ कल्बिन लम युरसल लिस्सैद ये ऐसा कुत्ता जिसको शिकार के लिए नहीं भेजा गया, जिसको शिकार के लिए भाई भेजना भी तो जरूरी है, भेजते हुए अल्लाह का नाम लेना है, तो अगर शिकार किया वो कुत्ता तो तरबियत याफ्ता है लेकिन उसको शिकार के लिए नहीं भेजा, वो खुद ही खुला हुआ था, उसने आकर शिकार पकड़ लिया और वो शिकार को मार दिया, तो इस सूरत में वो शिकार हलाल नहीं। ये माना औ कल बिल्लम युरसल लिस्सैद ऐसा कुत्ता है जिसको शिकार के लिए नहीं भेजा गया, यानी यूं का आवारा कुत्ता है, औ अरसला उस कुत्ते को तो भेजा गया है लेकिन वह तरकत तस्मियत आमिदन अल्लाह के नाम को जानबूझकर छोड़ दिया, तो इन सब सूरतों में शिकार हलाल नहीं। वला यतूल वक्फतुहु बाद इरसालिही, इसका आतफ उसी पर है, पीछे क्या था वह अन ला युशारिका और यह है वह अल्ला यतूल और लंबा ना हो, वक्फतुहु उसका वक्फा बाद इरसाली ही उसको भेजने के बाद, भाई आपने परिंदे को या उकाब को या दरिंदे को किसके लिए भेजा, शिकार के लिए, तो वो आपके हाथ से निकलते सीधा शिकार के लिए जाए, दरमियान में अगर उसने देर कर दी तो फिर शिकार हलाल नहीं। मसलन शिकारी ने कुत्ता छोड़ा और अल्लाह का नाम लिया लेकिन कुत्ता शिकार के तरफ जाने के बजाय एक तरफ गया, उसने पेशाब शुरू कर दिया और फिर उसके बाद वो शिकार की तरफ गया, तो भाई ये तो वक्फा आ गया दरमियान में, इस सूरत में अब ये शिकार हलाल नहीं अगर कुत्ता गया और उसने उसको मार दिया। हाँ अगर जख्मी है फिर तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लिया हो ना लिया हो जो भी हो, जब आपके काबू आ गया अगर आप जिबा कर लेते हैं फिर तो हलाल ही हलाल है। तो यह बार बार मैं जिक्र नहीं करूंगा, आप बस याद रखना कि जिस तक आप जिंदा पहुंच गए उसको तो चाहे किसी कुत्ते ने मार पकड़ा है, किसी और चीज ने पकड़ा, किसी आवारा कुत्ते ने पकड़ा है, जिसने भी पकड़ा है, जब जिंदा आपके हाथ आ गया आप जिबा कर लेंगे वो तो आपके लिए हलाल हो गया। तो जब यहां कि वो हलाल है या हलाल नहीं, ये किस हैवान की बात हो रही है जिसको वो दरिंदा या परिंदा जाकर मार दे पहुंचने से पहले ही, तो उसी की बात हो रही है। तो कहते हैं वक्फा उसमें लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरी सूरत, शिकारी ने कुत्ता छोड़ा और वो कुत्ता उसको साइड पर कोई खाने की चीज नजर आई, वो पहले उसकी तरफ चला गया, उसने वो चीज खाई जल्दी से और फिर शिकार की तरफ गया, नहीं भाई ये तो दरमियान में क्या आ गया, वक्फा आ गया, ये जो आपने भेजा ये तो सीधा शिकार की तरफ गया ही नहीं, गोया आपका इरसाल खत्म हो गया, अपनी मर्जी से फिर वो गया शिकार के लिए, या कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ा, कुत्ता दरमियान में बैठ गया चंद मिनट बैठा और फिर उसके बाद शिकार के लिए गया, तो ये तो वो अपनी मर्जी से गया है आपके भेजने पर नहीं गया। तो ये मानना है वला यतूल वक्फतुहू बाद इरसालिही, और ये कि वो वक्फा जो है वो लंबा ना हो जाए उसको भेजने के बाद, फइन्नहु इन तालत वक्फतुहू बाद इरसाली लम यकुन इलिस्तियादु मुजाफन इलल इरसियाली, कहते हैं अगर लंबा हो जाए वो जो वक्फा उसको भेजने के बाद है तो लम यकुन इलिस्तियादु, तो फिर वो जो शिकार है वो लम यकुन इलिस्तियादु मुजाफन, उस शिकार की निस्बत नहीं की जाएगी इलल इरसाली भेजने की तरफ, कि भेजने की वजह से शिकार नहीं किया तो खुद गया है। बिखिलाफ इमा इदा कमन अल फहदो, बखिलाफ इसके कि अगर चीता जो है वो घात लगाकर बैठा, फहद फहद चीते को कहते हैं, किसको चीता, और जबकि बाजों ने कहा कि फहद तेंदुए को कहते हैं, किसको तेंदुआ, तेंदुआ अगर आप चिड़ियाघर गए हो आपने देखा होगा चीता और तेंदुआ ये एक ही नस्ल के हैं, नस्ल एक ही है लेकिन चीता जो है उसका बदन बड़ा दुबला पतला होता है। शिकारी कुत्ता आपने देखा है, शिकारी कुत्ता एक आम कुत्ता होता है, एक शिकारी कुत्ता उसका पेट बिल्कुल छोटा सा होता है और सीना बड़ा होता है और दुबला पतला सा होता है और ऊंचा कद होता है, चीता बिल्कुल इस शक्ल का होता है, चीता इसकी तरह होता है, और एक होता है तेंदुआ, तेंदुए के जिस्म पर भी चीते जैसे निशान होते हैं लेकिन तेंदुए का जिस्म जरा भारी होता है, क्या होता है भारी होता है, अमूमन उस तेंदुए को ही लोग क्या कह देते हैं चीता कह देते हैं, लेकिन चिड़ियाघर आप जाएंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा भाई। तो बाजों ने कहा ये फहद चीते को कहते हैं और बाजों ने कहा फहद उस तेंदुए को कहते हैं, तो एक शख्स है उस शिकारी ने चीते या तेंदुए को तरबियत दी हुई है, इस आपने अपने चीते को भेजा, चीता शिकार की तरफ जाने के बजाय फौरन सात झाड़ियों में छुपकर बैठ गया और शिकार पर नजर है उसकी, और फिर थोड़ी देर बाद जब शिकार जरा करीब आया चीता एकदम निकला और उसने जाकर शिकार कर लिया उसको, तो क्या ये हलाल है या हलाल नहीं, अब तो दरमियान में वक्फा आ गया। कहते हैं भाई नहीं, ये वक्फा मुराद नहीं, ये तो शिकार ही के अमल का हिस्सा है उसका, चीता शिकार उमूमन करता ही इस तरह है, वो क्या करता है शिकार के लिए घात लगाकर छुप कर बैठ जाता है और जब शिकार करीब आता है तो क्या करता है उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। तो ये अगर किसी कुत्ते ने भी ये आदत अपना ली वो भी इसी तरह करता है तो ये कोई अलग चीज है ही नहीं, लिहाजा इसकी वजह से इसको वक्फा नहीं कहेंगे भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ इमा ईदा का मनल फहदू, बखिलाफ इसके जबकि चीता घात लगाकर बैठे, फ इन नहादा ही लतुन फिल इस्तियादी, इसलिए क्योंकि ये तो हीला है यानी चाल और तरकीब है फिल इस्तियादी शिकार में, फयकून मुजाफन इलल इरसाली, लिहाजा इस शिकार की निस्बत इरसाल ही की तरफ की जाएगी कि इस भेजने की वजह से इसने शिकार किया है। वह युअलमुल मुअल्लमु बितर की अक्ल कल बि सलासा मर्रात, अब निशानी बतला रहे हैं, यह तो इन्होंने बतला दिया कि शिकार में शर्त यह है कि वो हैवान क्या हो तरबियत याफ्ता होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुत्ता या ये दरिंदा तरबियत याफ्ता है, या ये उकाब और जो परिंदा है शिकार वाला ये तरबियत याफ्ता है, तो उसकी निशानियां फुकहा बतलाते हैं, कहते हैं भाई कुत्ते की आदत यह है कि जब उसको खाने की चीज मिलती है तो वो उसको लेकर भागता है इंसान से और उसको खाता है, उसको खुद खा लेता है, लिहाजा कुत्ते की तरबियत यह है कि वो तीन दफा उस खाने की चीज को उस शिकार को रोककर खुद ना खाए बल्कि मालिक का इंतजार करे या मालिक के पास ले आए। अब देखो उसने अपनी आदत के खिलाफ एक काम किया, वो तो शिकार की या खाने की चीज मिलती है दूर लेकर भागता है और उसको खाता है, लेकिन अब यहां क्या कर रहा है वो खुद नहीं खा रहा, उस चीज को रोक लेता है मालिक के लिए, चाहे वहीं रोक ले चाहे लेकर मालिक के पास आ जाए जो भी सूरत हो, लेकिन खुद नहीं खाता, तो इसका मतलब है तीन दफा जब ऐसा कर ले तो इसका मतलब है ये तरबियत याफ्ता है, इसने अपनी आदत के बरखिलाफ एक चीज सीख ली है कि चीज किसके पास किसके लिए पकड़नी है मालिक के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए पकड़ी होती तो वो तो खाता उसको फौरन ही, तो ये उसके तरबियत याफ्ता होने की अलामत है कि तीन दफा शिकार को रोके मालिक के लिए, बात समझ में आ रही, लिहाजा तरबियत देख कर रहे हैं अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद आप उसको देख रहे हैं कि तरबियत याफ्ता हो गया या नहीं, पहली दफा छोड़ा सिखाने के बाद कुछ ये गया और इसने शिकार को पकड़कर रोक लिया मालिक के लिए, तो ये शिकार हराम है, अभी नहीं खाना भाई, अभी तरबियत याफ्ता नहीं हुआ। फिर दूसरी दफा फिर गया, फिर इसी तरह उसने रोका, वो भी हराम है। इसी तरह तीसरी दफा जब शिकार रोका, अब ये मालूम हुआ ये क्या है, तरबियत याफ्ता हो चुका है। अब इस तीसरे शिकार को खाएंगे या नहीं, तो उसमें फुकाहा का इख्तिलाफ। बस फरमाते हैं कि वो हलाल, तरबियत याफ्ता हो चुका। बस कहते हैं नहीं, इसके बाद अब तरबियत याफ्ता हुआ है, इससे पहले नहीं था। जबकि उकाब में तरबियत याफ्ता ये नहीं है कि वो खाने की चीज को रोक कर रखे इंसान के लिए। उकाब जो है वो इंसान से दूर भागता है, बस करीब आता ही नहीं है। तो उकाब की तरबियत याफ्ता होने की अलामत यह है कि मालिक उसको आवाज दे, बुलाए, तो वो सीधा मालिक के पास आ जाए। तो ये तो वो शिकार करता है और किसके पास ले आता है, मालिक के पास। तो ये उसके तरबियत याफ्ता होने की अलामत है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयुअल्लमुल मुअल्लमु, और जाना जाएगा तरबियत याफ्ता को, यानी तरबियत याफ्ता का पता चलेगा, बितर की अकलिल कल्बी सलासा मर्रातिन, कुत्ते के खाने को छोड़ देने से तीन मर्तबा, कि कुत्ता उस चीज को खाने को छोड़ दे, तीन दफा खुद ना खाए, मालिक के लिए रोक के रखे। व रुजुअल बाजी बिदुआइही, और उकाब का वापस लौटना मालिक के बुलाने से, कि मालिक उसको बुलाए तो उकाब वापस आ जाए, इससे उसके तरबियत याफ्ता होने को जाना जाएगा। अब सूरत यह कि एक शख्स ने कुत्ते को तरबियत दी और फिर उसके बाद उसने शिकार के लिए कुत्ते को अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया, और कुत्ता गया और हिरन को शिकार कर लिया। शिकारी के पास पहुंचा तो देखा कुछ हिस्सा उस हिरन में से वो कुत्ता खुद भी खा चुका है। तो क्या अब ये हिरन हलाल है कि हलाल नहीं? कहते हैं नहीं भाई, जब खुद खा चुका है, मालूम हुआ ये कुत्ता तरबियत याफ्ता है ही नहीं, ये तरबियत याफ्ता है ही। और शिकार के अंदर क्या शर्त थी, जो शिकारी दरिंदा हो वो क्या होना चाहिए, वो तरबियत याफ्ता हो, वो बकायदा शर्त है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। लिहाजा जब ये तरबियत याफ्ता नहीं, तो ये हिरन जो शिकार किया, एक जाहिल कुत्ते ने ये शिकार किया है, और जाहिल कुत्ते का शिकार यानी गैर तरबियत याफ्ता ने, और गैर तरबियत याफ्ता कुत्ते का शिकार तो जायज नहीं। सूरत समझ में आ गई। और हत्ता के सिर्फ ये नहीं, इस कुत्ते ने सिर्फ इस दफा खाया है, लेकिन मसलन आज ही इसके जरिए आपने चार पांच हैवान पकड़े थे, ये छठे को इसने जाकर खुद खाया है, छठे हैवान को, पांच वो पहले सही सलामत आप तक ला चुका है, या आप पहुंचे उसने एक को भी नहीं खाया था। कहते हैं वो पांचों भी हराम हो गए, वो पांचों भी क्या हो गए, हराम, बशर्ते कि वो आपके पास मौजूद हों। अभी अगर आप खा चुके हैं फिर तो मादूम हो गए, फिर तो हिल्लत और हुर्मत की बात ही नहीं है। जिसको उसने पहले शिकार किया था और तो वो अगर आपके पास अभी महफूज थे तो वो हराम हो गए। क्यों हराम हुए, वजह आप बताएं मुझे, क्योंकि वो गैर तरबियत याफ्ता कुत्ते के शिकार थे, और वो उसकी तो शर्त लगाई गई है भाई। अगर उकाब को आपने शिकार पर छोड़ा और उकाब ने किसी खरगोश को शिकार कर लिया और फिर वो आपके पास लेकर आया, या आप उसके पास पहुंच गए और आपने देखा कि उस खरगोश में से कुछ हिस्सा उकाब भी खा चुका है, खरगोश मर चुका है और कुछ हिस्सा उकाब भी खा चुका है, अब आप मुझे बताइए वो खरगोश हलाल है या हराम? क्यों? हाँ शाब, ये खरगोश हलाल है क्योंकि उकाब के अंदर यह शर्त नहीं थी कि वह हैवान को न खाए। उसके अंदर तरबियत याफ्ता होने की अलामत क्या थी, कि वह मालिक के बुलाने पर उसके पास आ जाए, बस। तो वहां न खाने की शर्त नहीं थी, और कुत्ते में तो शर्त थी कि अपने लिए शिकार न करे, बल्कि किसके लिए शिकार करे, मालिक के लिए। तो कहते हैं वयुअल्लमुल मुअल्लमु बितर्की अक्लिल कल्बि सलासा मर्रातिन, और कल्ब मुअल्लम को पहचाना जाएगा, यानी बितर्की अक्लिल कल्बि सला, के वो कुत्ता जो है खाने को छोड़ दे तीन मर्तबा। व रुजूइल बाजी बिदुआइही, और उकाब का वापस लौटना आका के बुलाने पर। फइन अकला मिन्हुल बाजी उकिला, अगर उस शिकार में से उकाब ने खा लिया है तो उकिला, उस शिकार को खाया जाएगा। किसने खाया है? उकाब ने, तो उसको खाया जाएगा। ये किस शिकार की बात हो रही है जो मर चुका है, मर चुका। अगर जिंदा हो फिर तो मैंने बतलाया बहस ही नहीं है, जिंदा है तो आप तो खुद जाकर उसको जिबा कर लेंगे, तो उस शिकार को खाया जाएगा, यानी वो हलाल है। ला इन अकलल कल्बु, हां अगर कुत्ते ने खाया है उसमें से फिर उसको नहीं खाया जाएगा, यानी वो हराम है। वला मा अकला मिन हो, उकीला नहीं अकला होना चाहिए, वला मा अकला मिन हो बाद तर की ही सला सा मर्रात, और न ही उस शिकार में से अकला मिन हो जिसमें से कुत्ते ने खाया है बाद तर की ही सलासा मर्रातिन, तीन मर्तबा छोड़ने के बाद, कुत्ते ने तीन मर्तबा छोड़ने यानी तरबियत याफ्ता होने के बाद जिसमें से खाया है उसमें से उसको भी नहीं खाया जाएगा, क्योंकि बेशक पहले तीन मर्तबा इसने नहीं खाया था लेकिन अब खा लिया है उस शिकार में से, मालूम हुआ ये क्या था, गैर तरबियत याफ्ता था, इसने शिकार को अपने लिए रोका, अपने लिए शिकार किया है, मालिक के लिए नहीं किया। वला मा साद बादहू, और उसको भी नहीं खाया जाएगा जिसको इसके बाद कुत्ता शिकार करे। कुत्ते ने क्या किया, शिकार में से खा लिया, अब फिर मजीद और शिकार करता है, उनको वो नहीं खा रहा, मालिक के लिए रोक रहा है, लेकिन वो भी अब हराम है जब तक दोबारा तरबियत याफ्ता ना हो जाए, दोबारा तीन दफा उसको देख ना लिया जाए, उसकी तरबियत ना हो जाए। सूरत समझ में आ गई। तो ये वला मा सादाबाद ना उसको जो उसकी जिसको उसके बाद शिकार करे, हत्ता या ताल्लामा, यहां तक कि वो फिर तरबियत पा ले, फिर तरबियत याफ्ता हो जाए। वकबलहू, इसका आतफ बादहू पर है, और उसको भी नहीं खाया जाएगा जिसको शिकार किया था कबलहू, इस कुत्ते ने इस शिकार से पहले, मैंने जैसे बताया कि सुबह से वो चार पांच शिकार कर चुका है, छठे को उसने खाया है, लेकिन वो पांचों के पांचों अगर आपके पास महफूज हैं तो वो हराम है। तो कहते हैं वकब लहू, और उसको भी नहीं जो इससे पहले उसने शिकार किए थे। व बकिया फी मिल्क ही, इस हाल में कि वो शिकार अभी शिकारी की मिल्क में बाकी हैं, अभी उसने उनको खाया नहीं। अला यहिल्लु मा सादल कल्ब, हलाल नहीं है वो जिसको कुत्ता शिकार करे, बादमा अकला बाद उसके जब वो उसमें से खा ले तो वो हलाल नहीं है। हत्ता यतअल्लमा, यहां तक कि वो तरबियत याफ्ता हो जाए। अयत रुकल अकला सलासा मर्रातिन, यानी वो खाने को छोड़ दे तीन मर्तबा। वला यहिल्लु मा साद कबल अल अकली, और हलाल नहीं है वो शिकार भी जिसको उसने शिकार किया था खाने से पहले, कि इजा बकिया फी मिल्क ही, जबकि वो शिकार अभी शिकारी की मिल्क में बाकी हो। फैनल कल्ब इजा अकला, इसलिए क्योंकि कुत्ते ने जब खा लिया तो उलिमा, तो ये बात मालूम हो गई कि अन्नहु लम यकुन कल्बन मुअल्लमन, कि ये तो तरबियत याफ्ता कुत्ता नहीं था। वकुल्लु मा साद कबल जालिकल अकली, और हर वो चीज जिसको शिकार किया था इस कुत्ते ने इस खाने से पहले, फहुवा सैदु कल्बिन जाहिलिन, वो भी एक गैर भी तरबियत याफ्ता कुत्ते का शिकार था। फयहरुमु तो वो हराम होगा। इजा बकिया फी मिल्की सयादी, जबकि वो बाकी हो शिकारी की मिल्कियत में। बात समझ में आ गई। वमिन शर्तिल हल बिर्रमी अत्तस्मियतु जी, ये तो था गुजर गया दरिंदे और परिंदे के जरिए शिकार करना, अब जिक्र आया है तीर के जरिए शिकार करना। तीर के जरिए, याद रखिए एक है शिकार तीर के जरिए और एक है बंदूक की गोली के जरिए। बंदूक की गोली या छरे वाली बंदूक होती है, छरे के जरिए लोग शिकार करते हैं, या इसी तरह बाद लोग गुलेल के जरिए शिकार करते हैं, गुलेल में पत्थर के जरिए मारते हैं परिंदों वगैरह को। तो इसमें तफसील याद रखिए कि ये जो तीर आप चला रहे हैं ये आपका आला है, इसके जरिए आप शिकार कर रहे हैं, तो तीर चलाते हुए क्या कहना जरूरी, अल्लाह का नाम लेना जरूरी। और नीज देखो तीर जो है ना, तीर की अगली नोक बड़ी तेज होती है, वो हैवान को चीरने फाड़ने वाली है, उसको लगेगा तो उसके जिस्म में तीर घुस जाएगा, आर पार गुजर जाएगा उसमें से। तो ये छुरी जैसा काम करता है, किस जैसा काम करता है, उसके बदन को काट देता है। तो लिहाजा ये आला ऐसा होना जरूरी जो अपनी तेज धार की वजह से उसके बदन को फाड़े, हैवान के बदन को। अगर ऐसा आला नहीं तो फिर इस सूरत में वो हैवान आपके पहुंचने से पहले मर गया तो हराम होगा। मसलन छरे वाली बंदूक के जरिए, छरे के जरिए मारता है किसी परिंदे को, भाई अब छरे की नोक होती है छरा, छरे की तो नोक नहीं होती भाई, छरा तो बिल्कुल आगे से हमवार होता है। मैंने कहा छुरी की तरह तेज जो काटे काटे दूसरे को, तो छरा छरा क्या छुरी की तरह तेज है? नहीं, लेकिन ये हैवान या परिंदे के बदन में दाखिल तो हो जाता है, तो ये दरअसल उसके बदन को काटता नहीं, बल्कि काटने की वजह से नहीं दाखिल होता, बल्कि अपनी रफ्तार और अपनी जर्ब की वजह से अंदर दाखिल होता है। एक है छुरी, देखो छुरी बदन में दाखिल होती है, काट कर दाखिल होती है। आप छुरी थोड़ी दरमियानी रफ्तार से भी चलाते हैं वो बदन को काट देती है या नहीं? लेकिन दरमियानी रफ्तार से आप पत्थर या कोई और चीज चलाएं तो वो बदन को काटेगी? नहीं। तो पत्थर अगर बदन को काट रहा है, इसका मतलब है आपने बहुत ज्यादा जोर से उसको मारा है, बहुत ज्यादा जोर से। तो पत्थर वगैरह बदन को दबाकर उसको फाड़ते हैं, उसको काटते नहीं है। लिहाजा ये जो छरा है इसके जरिए शिकार हलाल नहीं, क्योंकि ये बदन को काटता नहीं है, बल्कि अपने दबाव और जोर की वजह से उसको फाड़ देता है। इसी तरह बंदूक की गोली भी आगे से हमवार होती है, गोल होती है, वो बदन को काटने वाली नहीं, लिहाजा उसके जरिए भी अगर शिकार किया और पहुंचने से पहले शिकार मर गया तो वो हराम है। हां, अगर आप पहुंच गए फिर तो हलाल है, उसको जिबा कर लें। हां, बाज बंदूक की गोलियां आगे से बड़ी तेज और नोकदार होती हैं, उसमें फिर बाज आजकल के उलमा बाज फरमाते हैं कि उसके जरिए शिकार जायज है, उसके जरिए यानी अगर वो मर भी जाए हैवान आपके पहुंचने से पहले तो वो जायज है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा तीर के जरिए भी क्या शर्त है कि आप अल्लाह का नाम लें। और नीज ये इसमें भी ये जरूरी कि ये तीर क्या करे, उसके बदन को फाड़ काट दे, फाड़ दे, खून निकाले, क्योंकि ये आपकी जबहे इज्तिरारी है और जबा के अंदर खून निकालना जरूरी। देखो गले से तो ज्यादा खून निकलता है, किसी और बदन के हिस्से पर से तो इतना ज्यादा खून नहीं निकलेगा, लेकिन बहरहाल खून तो निकल आया। सूरत समझ में आ गई? लिहाजा कुत्ता या उकाब या तीर के जरिए आप शिकार करते हैं और वो उन्होंने मसलन हिरन के पिछले टांग को जख्मी किया, दोनों टांगों को, अब आप कहते हैं इतना खून तो शायद नहीं निकला। नहीं भाई, खून तो निकला है, बात इतनी है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वमीन शर्तिल हल्ली बिर रमी, रमी का माने तीर फेंकना। तीर चलाने के जरिए शिकार के हलाल होने की शर्तों में से है अतस्मियतु, अल्लाह का नाम लेना। अल्ला यत्रुकुहा हामिदन, यानी उसको जानबूझ करना छोड़े, अगर भूले से रह जाए फिर हलाल है। वल जरहु, और दूसरी शर्त क्या है तीर के जरिए शिकार के हलाल होने की शर्तों में से? एक अल्लाह का नाम लेना है, वल जरहु और जख्मी करना है। वह अल्लाह या कौदान तलबी ही लौहा ब मुतहा मिलन सहमह, और ये कि वो शिकारी न बैठे उस शिकार को तलब करने से अगर वो शिकार गायब हो जाए उस तीर को उठाकर। मुतहामिल का माना है किसी चीज को बर्दाश्त करके, बर्दाश्त कर लेना, यानी आपने तीर चलाया और वो तीर आपको नजर आया कि हिरन को लग गया है, उसके बदन में पैवस्त हो गया है, लेकिन वो हिरन उस तीर के साथ ही भागता चला गया और आपकी नजरों से गायब हो गया, तो देखो उसने आपके तीर को बर्दाश्त किया और उसको अपने साथ ही उठा कर ले गया। अब आप उसकी तलाश में लगे हैं कि जख्मी तो हो गया है, ज्यादा दूर ये नहीं जा सकता, तो आप उसकी तलाश में लगे हैं। तलाश करते करते आपको एक जगह वो हिरन मरा हुआ मिला, तो ये हलाल है। ये क्या है? हलाल है। हां, अगर आप इसकी तलब से बैठ गए, एक आध घंटा आराम किया, थक गए आप तलाश करते करते, आप बैठ गए फिर दोबारा तलाश करने लगे, अब आपको किसी जगह मरा हुआ पड़ा मिला, तो अब हराम है, क्योंकि आप बैठ चुके हैं। अब पता नहीं आपके तीर की वजह से मरा है या किसी और जानवर या हैवान ने इसको या सांप वगैरह ने काटा है। ये माना है वह अल्लाह या कौदान तलबी ही लौगा बमुतहा मिलन सहम हो, और ये कि शिकारी न बैठे उसको उसकी तलाश से। लौगा ब अगर वो गायब हो जाए वो शिकार, मुतहा मिलन सहम हो उसके तीर को उठाकर। ऐ रामा, यानी उसने तीर चलाया शिकारी ने, फगा ब अन बसरी ही, तो वो शिकार गायब हो गया शिकारी की नजर से। मुतहा मिलन सहम हो उसके तीर को उठाकर। فَأَدْرَكَهُ مَيِّتًا, پس شکاری نے اس کو مردہ پایا, ایک جگہ مرا ہوا پڑا پایا. فَإِن لَّمْ يَقُدْ عَن طَلَبِهِ حَلَّ أَكْلُهُ, اگر شکاری اس کی طلب سے بیٹھا نہیں تو اس کا کھانا حلال ہے. لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ, اس لیے کیونکہ یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے. یہ اس کی
قدرت میں نہیں.
کیا قدرت میں نہیں ہے کہ اس کو زندہ ہی پالے, اس کو
زندہ ہی پالے,
فوراً ہی, فوراً تو نہیں پا سکتا نا, یعنی یوں کہ فوراً اس کو حاصل کر لے, یہ تو اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے شکار کو, اور زندہ اس تک نہیں پہنچ سکا, اس کے پہنچے تک وہ مر چکا تھا اور کافی تلاش کے بعد ملا, تو یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے. اس کو زندہ پا لینا یا فوراً اس تک پہنچ جانا اس کی قدرت. ہاں, وہ ان قاعدہ عن طلب ہی یحرم, اگر یہ اس کی طلب سے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے, یحرم پھر وہ حرام ہے. لِأَنَّ فِي وُسْعِهِ أَن يَطْلُبَهُ, اس لیے کیونکہ یہ اس کی وسعت میں ہے, یعنی اس کی قدرت میں ہے, أَن يَطْلُبَهُ, کہ وہ اس کو طلب کرے. یہ تو اس کی قدرت میں ہے طلب کرے, اور لیکن یہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر آرام کر لیا, تو لہذا اب وہ کیا ہو جائے گا, حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعل هوام الارض قتلته, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شاید کہ حوام الارض قتلته, حوام کہتے ہیں زمین کے جو حیوانات ہیں, خصوصاً یہ جو زہریلے حیوانات ہیں, سانپ بچھو وغیرہ, شاید اس کو زمین کے زہریلے حشرات نے قتل کر دیا ہو. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی یہ شکار کے شوقین تھے بھائی, تو یہ حضور سے مسائل پوچھے, اور وہ روایات میں ذکر آتا ہے, تو اس میں ذکر فرمایا حضور نے کہ تم اس کی طلب سے بیٹھو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے ملتا ہے, بعد میں ملتا ہے, تو حضور نے فرمایا شاید کہ زمین کے زہریلے حشرات نے اس کو قتل کیا ہو, لہذا اس کو نہ کھاؤ, اگر خود تلاش. بات سمجھ میں آ رہی, تو احادیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے. حضرت عدی بن حاتم بھائی, یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں بھائی, حاتم طائی مشہور سخی جو گزرا ہے, ان کے بیٹے عدی بن حاتم, یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حاتم طائب عجیب سخاوت اللہ نے اس کو نصیب فرمائی تھی جو آج تاریخ کا حصہ ہے. دیکھو نیکیاں کرو گے تاریخ آپ کو یاد رکھے گی, تاریخ یاد رکھے گی, اور جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتا ہے دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا, چاہے وہ کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, کھرب پتی ہو, تاریخ اسے یاد نہیں رکھتی. لیکن جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے, نفع پہنچاتا ہے, فائدے پہنچاتا ہے, تو سب اس کو یاد رکھتے ہیں. تو سخاوت کا وصف اپناؤ, سخاوت بڑے لوگوں کا وصف ہے. اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا آدمی بنائے, بڑا عالم بنائے, بڑا مدرس بنائے بھائی. بڑے لوگوں کی صفات اپناؤ, آپ بڑے بن جائیں گے. اور سخاوت کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں میرے پاس تو مال نہیں ہے لہذا میں کیا سخاوت کروں. نہیں نہیں, سخاوت بس اپنے ساتھیوں کی جس حد تک, مثلا ساتھی آتا ہے اور آپ اس کو چائے پلا سکتے ہیں یا اس کے, تو اس کو چائے پلائیں بھائی. اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں بھائی کہ چائے نہ پلانا پڑ جائے بھائی, تو یہ تو یاد رکھو, سخاوت اصل اس کے لیے دل چاہیے, دل, مال نہیں چاہیے, دل چاہیے, دل چاہیے. اور بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا دل دیا ہوتا ہے, انسان حیران ہوتا ہے. میں والد صاحب رحم اللہ کی سخاوت دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں, حالانکہ انہوں نے زندگی کا ابتدائی, ان کی زندگی دیکھو, بڑی غربت اور مشقت والی زندگی, یتیم تھے بھائی. بچپن میں ہی والد صاحب کے, یعنی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا, والد صاحب کی عمر شاید 5-6 سال ہوگی یا کتنی, تو دادا کا ہمارے انتقال ہو گیا, تو والد صاحب نے بڑی غربت میں زندگی گزاری, حد سے زیادہ غربت میں زندگی گزاری. اور ہوتا یہ ہے کہ جو شخص عموماً غربت میں زندگی گزارتا ہے, اس کو بعد میں اگر کچھ مال مل بھی جائے, وہ بڑا بخل کرتا ہے, کیونکہ اس نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں, خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے اس کو, وہ مال کو جوڑتا چلا جاتا ہے اور پھر سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن والد صاحب نے اتنی تنگی کے باوجود اتنی سخاوت کے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی. مدرسے میں کئی طلبہ اب ہمیں आकर बताते हैं वफा, जिंदगी में पता ही नहीं था किसी को, खामोशी से खुफिया सखावत भी एक दिख, सामने भी सखावत होती थी और खुफिया सखावत की बीसियों तलबा के वजीफे मुकरर होते थे, पूरा पूरा साल उनको हर महीने बाकायदगी से वजीफे मिलते थे। और ये हमें वफात के बाद बहुत से तलबा ने आकर बतलाया कि फला फला इतने साल में यहां पढ़ता रहा और हजरत शेख मुझे हर महीने वजीफा देते थे और मेरे साथ फला फला इतने साथियों को तो मुझे पता है, सबका मुझे पता नहीं, इतने इतने साथियों का मुझे पता है, उनका भी वजीफा बाकायदा मुकर्रर था। जब तक वो यहां पढ़ते रहे हजरत उनको वजीफा देते रहे, वो किसी एक साथी तालिब इलम को मुकर्रर फरमाते और वो उसके जिम्मे होता था, वो खामोशी से सबको पहुंचाता था, किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। इसी तरह तलबा में कभी पैसे भी तकसीम फरमाते, पैसे तकसीम फरमाते, और उस जमाने में ये एक एक दो दो रुपए और पांच पांच रुपए वगैरह या दस रुपए के नोट जो होते थे, ये तमाम दौरे हदीस में सैकड़ों तलबा होते सारों में तकसीम करते। और हजरत शेख से तलबा की इतनी मोहब्बत थी जिसे लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। आज भी उनके शागिर्द मिलते हैं तो कहते हैं हजरत ने हम जिस साल दौरे हदीस किया कई मरतबा पैसे तकसीम फरमाए, वो नोट कहते हैं आज भी हमने 40-50 साल गुजरने को हैं, आज भी हमारे पास महफूज हैं, हमने बरकत के तौर पर अपने पास महफूज रखे। यानी इतनी मोहब्बत थी कि उनके दिए हुए पैसे खर्च भी नहीं करते थे, अपनी सआदत समझ के हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर लेते थे, अजीब मोहब्बत थी। और फिर तलबा पर खर्च करते, फिर दारुल हदीस में दो किस्म की रोशनाई का इंतजाम होता था हर वक्त हजरत की तरफ से, एक नीले रंग की और एक स्याह रंग की। बास तलबा नीले रंग को लिखना पसंद करते तो नीली रोशनाई उनके लिए, और जो काली रोशनाई इस्तेमाल करना चाहते उनके लिए काली रोशनाई। तो सारा साल दारुल हदीस में रहती और जैसे ही खत्म होने लगती हजरत को इत्तला दी जाती और वो फिर नई मंगवा देते। इसी तरह उस जमाने में तलबा के लिए बर्फ वगैरह ठंडे पानी का इंतजाम नहीं था, तो रोजाना तलबा के लिए बर्फ मंगवाते थे और वो ठंडे पानी का इंतजाम उनके लिए करते थे हमेशा भाई। तो और फिर आम वैसे जो सखावत होती आम लोगों के अंदर, इंसान हैरान रह जाता। और अजीब आदत थी, जेब में हाथ डालते जितने पैसे हाथ में आ जाते वो सामने वाले को हाथ बंद करके बस दे देते, चाहे 100 आ गए, चाहे 500 आ गए, 1000 आ गए, 2000 आ गए, जितने हाथ में आए वो सारे उस दूसरे को दे देते थे भाई। तो अजीब अल्लाह ने सखावत नसीब फरमाई थी भाई। फिर खुसूसन हरमैन शरीफेन जाते तो वो सखावत और ज्यादा बढ़ जाती, वहां तो बड़े बड़े मालदार भी आकर हजरत को जब मिलते थे तो जेब में कुछ हाथ डालकर जरूर उसको कुछ ना कुछ दे देते। वो कहते हजरत हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, पहले ही मौजूद हैं। कहते नहीं नहीं बस ये आप रखें मेरी तरफ से। तो सर हर मिलने वाले को देते थे, इंसान हैरान रह जाता था भाई, बहुत सखावत अल्लाह ने। फिर जामे में रहने वाले हमसाय वगैरह कभी एक के घर कभी कोई चीज हमें देते कि ये उनके घर दिया, फल वगैरह कोई चीज कोई फला के घर दिया, कोई अरब से मेहमान असातिजा वहां जामिया में पढ़ाते थे अरबी सिखाने के लिए, कभी उनके लिए फल भिजवा देते, बहुत सारा फल किया उनके घर दिया। तो अजीब उनकी सखावत थी भाई, आज भी वो लोग याद करते हैं कि हमने हजरत जैसा जैसी सखावत आज तक नहीं देखी भाई। तो सखावत का खूगर बनाओ अपने आप को भाई। और उलमा ने लिखा है कि खुद भी सखावत करो और अपने बच्चों की भी तरबियत करो, उनको भी सखावत का खूगर बनाओ। और उसका तरीका ये कि किसी को कोई चीज देने लगे तो कभी बच्चों के हाथ भिजवा दिया करो कि ये उसको दियाओ या उनके घर दियाओ या उनके घर दियाओ। इस तरह बच्चे को भी आहिस्ता आहिस्ता सखावत की आदत हो जाएगी। ये उलमा ने, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह वगैरह उलमा ने लिखा है बाकायदा भाई। और फिर अगर माल नहीं है तो भी सखावत कर सकते हैं भाई। सखावत तो असल में दिल का वसफ है भाई, दिल का। हत्ता कि अगर कोई माल कुछ भी नहीं है तो उलमा कहते हैं कि कम से कम ये मिसवाक ही तोड़कर, दरख्त से शाख तोड़कर मिसवाक बनाकर अपने कुछ साथियों को दे दिया करो ताकि हाथ को देने की आदत पड़ जाए। دیکھیے بھائی آپ کی تاپ پر، وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم لعل حوام مل ارض قتلت، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تھا، اسی سے حاتم تائی کا ذکر آیا. حاتم تائی جو تھا وہ اہل ایمان میں سے تھا بھائی، یاد رکھیے وہ عیسائی تھا، عیسائی، اور اس ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اور اس زمانے میں دین عیسوی حق تھا، اور چنانچہ اور یہ اس کی نیکی اور سخاوت دیکھو کہ بیٹے کو اللہ نے پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف نصیب فرما دیا. آگے دیکھیے بھائی، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمُرْسِلُ أَوِ الرَّامِي حَيًّا زَكَّاهُ، اگر اس حیوان کو، اس شکار کو پا لیا، المرسلو اس حیوان کو بھیجنے والے نے، وہ جس نے شکاری کتا یا پرندہ بھیجا تھا، اگر اس نے اس شکار کو پا لیا، ابھی رامی یا اس تیر چلانے والے نے اس شکار کو پا لیا، حیان کہ وہ زندہ تھا، تو زکاہو پھر کیا کرے، اس کو ذبح کرے. المراد وانہ ادرکہ حیان، کہ مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو زندہ پا لیا. وفیہ من الحیات فوق ما یکون فی المذبوح تجب التزکیت، اور اس میں زندگی ہے، اتنی زندگی، فوق ما یکون فی المذبوح، جو مذبوح سے بڑھ کر ہے، مذبوح سے بڑھ کر. بھائی ایک ہے مذبوح، مذبوح وہ حیوان جس کو آپ ذبح کرتے ہیں، کوئی بکری وغیرہ آپ نے ذبح کی، دیکھو اب جب آپ نے اس کی گردن پر چھری چلا دی، آپ نے اس کی گردن کاٹ دی اور کاٹ کر آپ الگ ہو گئے، تو ابھی بھی اس میں زندگی ہے یا نہیں، وہ تڑپ رہی ہے، وہ پاؤں مار رہی ہے، تو یہ زندگی ہے. تو آپ مثلا حیوان تک پہنچے اور اس حیوان کے اندر بس اتنی ہی زندگی تھی اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ مر گیا شکار، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پہنچے وہ تو زندہ تھا، آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ حرام ہے، کیونکہ اس کی زندگی وہ مذبوح سے زیادہ زندگی نہیں. جیسے مذبوح چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ شکار بھی ایسا ہی، اس کو کتے نے یا عقاب نے اتنا بری طرح یا تیر نے اتنی بری طرح زخمی کیا تھا کہ بس وہ ختم ہی ہونے والا تھا. تو اب آپ ذبح نہ بھی کریں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس میں مذبوح جانور سے زیادہ زندگی نہیں. لیکن اگر مذبوح سے زیادہ زندگی ہے، مثلا تیر نے یا کتے نے یا عقاب نے اس کو اتنا زخمی کیا ہے کہ وہ حرکت تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ایک آدھ دن وہ گزار جائے گا، مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، تو اس میں زندگی کیا ہے، مذبوح سے زیادہ ہے، تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، پھر ہی حلال ہوگا. یہ معنی ہے المراد انہ ادرکہ حیا وفیہ من الحیات فوق ما یکون فی المذبوح، اور مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو زندہ پایا ہو اور اس میں اتنی زندگی ہو جو مذبوح سے زیادہ ہو، مذبوح سے بڑھ کر ہو، تو تجب التزکیت، تو اس کو ذبح کرنا واجب ہے. حتی لو ترکت تزکیت یحرم، یہاں تک کہ اگر اس نے ذبح کو چھوڑ دیا تو وہ حرام ہو جائے گا. وقد قال فی المتنی، اور متن کے اندر مصنف نے تحقیق فرمایا ہے، فَإِن تَرَكَهَا عَمْدًا، اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یہ اگلے متن میں آ رہا ہے، اگلا متن دیکھ رہے ہیں آپ، فَإِن تَرَكَهَا عَمْدًا، اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا، تو کہتے ہیں متن میں جو وقد قال فی المتنی، متن میں کہا ہے فَإِن تَرَكَهَا عَمْدًا، بھائی آگے متن میں آ رہا ہے اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ حرام ہے، وہ حرام. کہتے ہیں بعض اوقات انسان ذبح پر قادر ہی نہیں ہوتا، مثلا اس کے بعد چھری نہیں ہے، پہنچ تو گیا، اس میں زندگی تو تھوڑی سی ہے، آدھا گھنٹہ زندہ رہ لے گا مثلا، یہ گھنٹہ زندہ رہ لے گا شکار، مذبوح سے زیادہ زندگی ہے اس کے اندر، لیکن اس کے بعد چھری نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی امام صاحب کے نزدیک اگر وہ اس پر، وہ ذبح پر قادر ہی نہیں ہے، چھری نہیں ہے تو ذبح پر قادر ہی نہیں، اگر وہ ذبح پر قادر ہی نہیں ہے پھر تو وہ حلال ہے، پھر تو حلال ہے، لیکن ظاہر الروایت میں آیا ہے کہ وہ حرام ہے. چھری کیوں نہیں ہے، شکار کے لیے جاتے گئے ہو اور چھری اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے بھائی، تو چھری یہ تو آپ کا قصور ہے، تو ظاہر الروایت میں ہے کہ اگر حیات اس میں زیادہ ہوئی پھر کوئی عذر نہیں دیکھا جائے گا، پھر وہ حرام ہو جائے گا اگر ذبح نہ کیا، اور فتویٰ بھی ظاہر روایت پر ہی ہے. تو کہتے ہیں وقد قال فی المتنی اور متن میں ماتن نے فرمایا ہے فان ترکھا عمدن اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو کہتے ہیں المراد بہ انہ ترک تزکیہ مع القدرۃ علیہا کہ اس نے ذبح کو چھوڑ دیا ہو باوجود قدرت کے اس پر یعنی ذبح پر قادر ہے پھر بھی اس نے چھوڑ دیا اما ان لم یتمکن من التزکیہ ففی المتن اشارۃ الی حلہ باقی اگر وہ قادر ہی نہیں تھا ذبح کرنے پر تو اس متن میں اشارہ ہے الی حلہ اس کے حلال ہونے کی طرف حلال ہونے کی طرف اگر وہ اس کے ذبح پر قادر ہی نہیں ہے تو متن میں اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے توجہ ہے توجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں قادر ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا حلال ہوگا متن میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہاں اشارہ ہے جی دیکھو متن میں فعین تارا کہا عمدن آیا ہے اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا جان بس جب قادر ہی نہیں ہے پھر تو جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہا نا ذبح کو بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ففیل متنی اشارت ان الا حلی تو متن میں اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے کماروی عن ابی حنیفہ رحم اللہ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے ماں ابو حنیفہ رحم اللہ سے وقضا عن ابی یوسف رحم اللہ اور اسی طرح روایت ہے ماں ابو یوسف رحم اللہ سے وہو قول الشافعی رحم اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحم اللہ کا یہ تینوں ائمہ فرماتے ہیں اگر یہ ذبح پر قادر نہیں اس میں مذبوح سے زیادہ زندگی تھی اور شکاری کے پاس چھری نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ یہ ذبح پر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں وہ حیوان مر بھی جائے تو حلال ہے لیکن وفی ظاہر روایتی انہ یحرم ظاہر روایت میں ہے کہ یہ حرام ہے اور میں نے بتلایا فتویٰ ظاہر روایت پر ہے بھائی وہ ان کا نہ حیات ہو مثلا حیات المذبوح فلا اعتبار لہا اور اگر اس کی زندگی مذبوح کی زندگی جیسے تھی یعنی مرنے ہی والا تھا تو فلا اعتبار لہا اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے فلا تجب التزکیت تو پھر ذبح کرنا واجب نہیں ہے اما فی المتردیتی و اخواتیہا و فی الشات اللتی مرضت بھائی صورت یہ کوئی بکری ہے جانور ہے وہ پہاڑ سے اونچائی سے گرا یا کسی کو ایک دوسرے حیوان نے سینگ مار دیا یا کوئی اور چیز پتھر یا لکڑی وغیرہ کسی نے مار دی یا کوئی بکری بیمار ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں اگر تو یہ مر گئے پھر تو حرام ہے لیکن اگر ان میں تھوڑی سی زندگی باقی تھی اور پھر بھی اس کو شخص نے ذبح کر لیا تو یہ سب حلال ہیں بھائی یہ سب کیا ہیں اگر تھوڑی سی زندگی بھی تھی ابھی زندہ تھے مرے نہیں تھے چاہے حالت بہت خراب تھی بالکل مرنے ہی والے تھے لیکن ابھی مرے نہیں تھے تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں شریعت نے بڑی وسعت دی ہے اور اگر زندگی ابھی تھی تو وہ تھوڑی سی زندگی بھی قابل اعتبار ہے اور وہ ذبح کر لیا اس دوران تو وہ ذبح کافی ہے تو کہتے ہیں وہ اما فل متردیتی و اخواتیہا متردیہ کہتے ہیں وہ حیوان جو اوپر سے گرا ہو بلندی سے وہ اخواتیہا جو اس کے مشابے ہیں یعنی جس کو کسی نے پتھر وغیرہ یا لاٹھی سے مارا ہے یا کسی دوسرے حیوان نے سینگ مارا ہے یا کسی نے اس کا گلا گھونٹا ہے کسی طرح تو یہ سب اس کے اخوات ہیں ان سب کا حکم یہی ہے تو کہتے ہیں وہ اما فل متردیتی و خواتیہ متردیہ بلندی سے گرنے والا حیوان اور جو اس کے مشابے ہیں وہ فشات التی مریضت اور وہ بکری جو بیمار ہو گئی فلفت و علا ان الحیات و ان قلت معتبرتن تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی و ان قلت اگرچہ تھوڑی سی ہی ہو معتبرتن تو وہ معتبر ہے حتی لو زکاہا وفیہا حیات قلیلتن یہاں تک کہ اگر اس کو ذبح کر دیا اور اس میں تھوڑی سی زندگی تھی یہ حل تو یہ حلال ہے لقولہ تعالی الا ما ذکیتم بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے الا ما ذکیتم مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو اس میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو تم ذبح کر لو وہ حلال ہے اور اس کو ان کو بھی کیا کر لیا مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو بھئی شارح نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ متردیہ یعنی اوپر سے گرنے والی اور اس جیسی جو اور حیوانات ہیں اور اسی طرح وہ بھیڑ بکری جو بیمار ہے اس میں تھوڑی زندگی کا بھی اعتبار ہے، اگر تھوڑی سی بھی زندگی اس میں باقی تھی آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. دراصل یہ مسئلہ شارح نے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ اس سے پیچھے ایک سطر پیچھے انہوں نے بتلایا تھا کہ اگر آپ نے شکار کیا اور آپ شکار کے پاس پہنچے اور شکار تڑپ رہا ہے، بالکل ختم ہونے والا ہے، یعنی اس میں صرف مذبوح کے بقدر زندگی ہے، جیسے جس جانور کو ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ چند سیکنڈ وہ تڑپتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ شکار بھی اگر اسی طرح تڑپ رہا ہو، اب اگر آپ پہنچ اگرچہ آپ پہنچے ہیں وہ تڑپ رہا ہے لیکن اب آپ پر ذبح ضروری نہیں کیونکہ اس میں مذبوح سے زائد زندگی نہیں اور مذبوح کے برابر زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پہاڑ سے کوئی بکری گری یا بیمار ہو گئی اور بالکل اب وہ مرنے والی ہے تو اس میں بھی کتنی زندگی ہے؟ مذبوح کے برابر، اور مذبوح کے برابر زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، تو لہذا اس کو ذبح کرو یا نہ کرو اب اس کو حرام ہونا چاہیے. پہاڑ سے گری ہے نا
جی،
یا بیمار ہے اب مرنے والی ہے، بالکل مذبوح کے بقدر زندگی رہ گئی ہے اور مذبوح کے برابر زندگی تو ابھی آپ نے ہمیں بتایا اس کا کوئی اعتبار نہیں، شکار تڑپ رہا ہو تو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہاں بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس زندگی کو کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے، یہ تو یوں سمجھو مر ہی چکی ہے گویا، اب آپ ذبح بھی کر دو یہ مردار ہی ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، اس معاملے میں شریعت نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، یہاں پر تھوڑی زندگی کا بھی اعتبار ہے چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اور مرنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر دیا، چند لمحے پہلے ہی پہنچ گئے اور آپ نے ذبح کر دیا، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے گا آپ نے زندہ حیوان کو ذبح کیا ہے اور یہ حلال ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آگے کہتے ہیں بھائی فَإِن تَرَكَهَا أَي تَزْكِيَةَ، دیکھا ہا ضمیر کا مرجع بتلا دیا، اگر تزکیہ یعنی ذبح کرنے کو چھوڑ دیا عمدن جان بوجھ کر، فماتا تو وہ حیوان مر گیا وہ شکار، او ارسل مجوسی ینکل بہو، یا مجوسی نے اپنا کتا چھوڑا، کتا بھیجا شکار کے لیے، فضا جارا ہو مسلم تو مسلمان نے اس کو ڈرایا، فن زا جارا تو وہ ڈر گیا، زجر کا ویسے مانے ڈانٹنا، ڈانٹنا یہاں ڈانٹنا مراد نہیں ہے بھائی، کسی کتے وغیرہ کو آواز نہیں، ہوش وغیرہ کی آواز کر کے ہاتھ اٹھا کر کسی کو ڈرا دیا ہے، تو دیکھو کتا اگر بھاگ رہا ہو اور کوئی آواز نکالے اور ہاتھ وغیرہ یوں اٹھائے گا تو کتا اور زیادہ تیز ہو جائے گا، تو اس کو زجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ڈرانا ہے، یہ جو اس کو تیز یوں کو بھڑکانا، اس کو بھڑکانا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زجر. تو صورت یہ ایک مجوسی نے اپنا کتا چھوڑا شکار پر اور راستے میں ایک مسلمان کھڑا تھا، اب مسلمان نے اس کو زجر کیا، آواز وغیرہ نکال کر اس کو تیز کیا اور کتا اور تیز ہو گیا اور جا کر اس نے شکار کر لیا، تو کیا اب یہ مسلمان کا زجر معتبر ہے؟ مسلمان کا یہ اس کو تیز کرنا اور اس کو بھڑکانا معتبر ہے؟ کیا اس شکار کو حلال سمجھیں یا حرام سمجھیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب ارسال اور زجر اکٹھے ہو جائیں، ایک ہے ارسال، ارسال میں تو باقاعدہ ہاتھ سے چھوڑتا ہے حیوان کو، چھوڑ کر بھیجا جاتا ہے، اور ایک زجر ہے اس کو بھڑکایا تیز کیا جاتا ہے، تو ارسال اور زجر جب جمع ہو جائیں تو اعتبار ارسال کا ہے. کس کا ہے؟ اور ارسال کس نے کیا؟ مجوسی نے، لہذا شکار حلال نہیں. اور اگر ارسال نہ ہو پھر زجر ہو صرف، تو زجر معتبر ہے. اب اگر مسلمان نے زجر کیا ہے تو پھر جا کر وہ شکار کر لیتا ہے تو وہ شکار حلال ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن تَرَكَهَا عَمْدًا فَمَاتَ، اگر اس نے جان بوجھ کر ذبح کو چھوڑ دیا تو وہ مر گیا، او ارسل مجوسی ینکل بہو، یا مجوسی نے یعنی پارسی نے اپنا کتا بھیجا، فضا جراہ مسلم تو مسلمان نے اس کو بھڑکایا، فن زا جارا تو وہ بھڑک گیا. خود آگے مانا بیان کر رہے ہیں، اے اغراہ بسیاح فشتد، اے اغراہ بسیاح یعنی اس کو ابھارا، بسیاح چیخ کے ذریعے، मैंने बताया ना आवाज निकाली जिससे वो डर कर तेज हो गया। आई अगराहु बिस्सियाह, यानी उसको उभारा बिस्सियाह चीख के जरिए, फश्तद्दा तो वो तेज हो गया। औ कतलहु मियाराज़ुन बिअर्ज़िही, या किसी शिकार को कत्ल कर दिया मियाराज तीर ने बिअर्ज़िही अपनी चौड़ाई के जरिए। भाई मियाराज एक तीर का नाम होता है। आम तीर जो है ना उसकी एक जानिब तो नोकदार होती है, लोहा लगा होता है, और पिछले हिस्से में गालिबन शायद पर वगैरह या कोई एक चीज लगा देते होंगे। जरा ये जो मियाराज तीर होता था ये दरमियान से मोटा होता था और किनारे जरा बारीक होते थे। इसको मियाराज कहते इसलिए थे क्योंकि ये अर्ज में यानी चौड़ाई में जाकर चीज को लगता है, चौड़ाई में। तो किसी ने मियाराज तीर चलाया और वो शिकार को चौड़ाई में जाकर लगा। तो याद रखिए इसने अगर इसने शिकार को फाड़ा है यानी उसकी नोक वगैरह लगी है फिर तो शिकार हलाल होगा, लेकिन अगर चौड़ाई में जाकर लगा है शिकार को फाड़ा नहीं बस जर्ब से मरा है तो शिकार हराम हो जाएगा। औकत अलहु मियाराज उन बिआरज़िही, यह कत्ल कर दिया शिकार को मियाराज तीर ने अपनी चौड़ाई के जरिए। अल मियाराज उस सहमुल्लदी ला रीश लहू, मियाराज वो तीर है जिसमें पर नहीं होता। रीश कहते हैं पर को, मैंने बतलाया तीर के अगले हिस्से पर लोहा नोकदार लगा होता है और पिछले हिस्से पे कोई पर या कोई इस तरह की चीज लगाते होंगे भाई। और मियाराज के तो दोनों किनारे जरा बारीक लेकिन दरमियान से मोटा होता है भाई। तो अल मियाराज उस सहमुल्लदी ला रीश लहू, मियाराज वो तीर है जिसमें पर नहीं होता। पर वही ये परिंदे का पर वगैरह नहीं है, ये लगा लेते हैं उसमें, तो उसमें पर वगैरह नहीं होता। सुम्य मियाराज अनली अन्नहु युसीबु शय अबी अर्ज़िही, इसको मियाराज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज को चौड़ाई में जाकर लगता है। फलौका नफी रअसिही हिद्दतुन, हिद्दत कहते हैं तेजी को, दाल मुशद्दद है, धार धार हो, धार जैसे छुरी या तलवार की धार होती है तेज। फलौका नफी रअसिही हिद्दतुन, अगर उस मियाराज तीर के सर में धार थी यानी उसकी नोक, वो नोकदार था दोनों तरफ से नोकदार, या वो हिस्सा जो लगा वो नोकदार था, धार वाला था। फअसाब बिहिद्दती ही, बस वो तीर लगा अपनी धार की साथ यानी धार उसकी जाकर लगी शिकार में, यह हिल्लो फिर क्या है वो हलाल है। अब बुंदुकतुन सकीलतुन, बुंदुका कहते हैं वो गुलेल के अंदर जो पत्थर वगैरह या गोली रखकर चलाते हैं, गुलेल से फेंकते हैं उसको बुंदुकतुन कहते हैं, या किसी ने मारा बुंदुकतुन सकीलतुन, ऐसा ऐसे गुलेल का पत्थर सकीलतुन जो वजनी था बड़ा था, जातु हिद्दतिन लेकिन नोकदार था, उसकी धार थी, क्या थी,
धार थी।
पत्थर वजनी था उसकी धार भी थी, ये जाकर शिकार को लगा और शिकार मर गया। तो कहते हैं ये हराम भाई, क्यों, ये तो धार वाला पत्थर था। कहते हैं भाई पत्थर भी तो वजनी था, अब पता नहीं धार की वजह से हैवान मरा है या इसके वजन की वजह से जाकर लगा जोर से इसलिए मरा है। तो जब दो दलीलें जमा हो जाएं, एक मुबीह हो एक मुहर्रिम, तो मुहर्रिम को तरजीह होती है क्योंकि एहतियात इसमें है, तो लिहाजा उसको हराम करार देंगे। लेकिन अगर गुलेल का पत्थर हल्का फुल्का सा है और है तेज धारी धार, अब उसके साथ आपने किसी बड़े हैवान को मारा और उसने उसको काट दिया तो फिर हलाल है। मालूम हुआ कि ये तो बड़ा हैवान है, ये इतने पत्थर से तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, मालूम हो इसने जो नुकसान पहुंचाया है अपनी धार की वजह से पहुंचाया है। इन नमा काल हाजा, मातिन ने ये फरमाया यानी ये हलाल नहीं, कहते हैं लिअन नहु यह तमिलु अयकून कद कतलहू बिसिकलिही, इसलिए क्योंकि ये भी एहतमाल है कि इस पत्थर ने उसको कत्ल कर दिया हो, बिसिकलिही किसकी वजह से, अपने बोझ और अपने वजन की वजह से। हत्ता लौकान खफीफन बिही हिद्दतुन, यहां तक कि अगर वो बुंदुका जो था वो हल्का फुल्का था और बिही हिद्दतुन और उसकी धार भी थी, यह हिल्लो फिर शिकार क्या होगा हलाल। लितायुनी अन्नल मौत बिल जरही, इसलिए क्योंकि यह बात मुतायन है कि मौत जो है उस जख्म की वजह से हुई है, जर्ब की वजह से, सिकल और बोझ की वजह से मौत नहीं हुई। और रमा सैदन फवका फी माइन, सूरत ये भाई आपने एक हैवान पर तीर चलाया और वो तीर उस हैवान को लगा और फिर वो हैवान नीचे पानी में गिरा اور جب تک آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا. تو کہتے ہیں یہ حیوان حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. اس لیے کیونکہ یہ پتا نہیں کہ آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے. اگر آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہو پھر تو حلال, اور پانی کی وجہ سے مرا ہو تو حرام. تو ایک دلیل کس کی جمع ہو گئی؟ ایک حلت والی اور ایک حرمت والی. تو کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ حرمت والی, لہذا یہ حرام. اور رما صیدن فوقع فی ماء, یا شکار کو تیر مارا تو وہ شکار پانی میں گر گیا. فانہ یحتمل ان الماء قتلہ فیحرم, تو اس کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی نے اس کو قتل کر دیا ہو تو وہ حرام ہے. او على سطح او جبل, یا وہ حیوان کس پر گرا؟ چھت پر گرا. او جبلن, یا پہاڑ پر گرا. فتردد منہ الی الارض, پھر وہاں بلندی سے وہ نیچے زمین پر گرا. حرم, تو ان تمام صورتوں میں وہ کیا ہوگا شکار؟ حرام. حرام ہوگا. دیکھو اس کا تعلق ان سب سے ہے, جان بوجھ کر تزکیہ کو چھوڑا تو وہ مر گیا, یا مجوسی نے کتے کو چھوڑا تھا مسلمان نے اس کو بھڑکایا اور وہ بھڑک گیا, یا معراض تیر نے اس کو چوڑائی میں قتل کر دیا, یا شکار کو تیر مارا اور وہ پانی میں گر کر مر گیا, یا پہاڑ کے اوپر تھا یا پہلے وہ پہاڑ پر یا چھت پر گرا اور پھر وہاں سے نیچے گرا, تو ان تمام صورتوں میں حرام وہ شکار کیا ہوگا؟ حرام ہو. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر میں ابھی آیا حرام. کہتے ہیں لئن الاحتراز عن مثل هذا ممکن, اس لیے کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے, اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے. یعنی آپ شکار کریں اور وہ پانی میں نہ گرے, آپ بچ سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر انتظار کرتے, وہ شکار پانی سے ذرا دور ہوتا پھر اس کو مار لیتے, یا وہ اس پر گرا پہاڑ پر اور پہاڑ سے نیچے گرا, آپ تھوڑا انتظار کر لیتے, جب شکار پہاڑ سے آگے نکلتا پھر آپ اس کو شکار کرتے. آپ نے ایک شکار کیا اور وہ پہلے چھت پر گرا یا پہاڑ پر گرا اور پھر اس بلندی سے وہ نیچے گرا تو آپ گئے تو وہ مر چکا تھا. تو یاد رکھو یہ حرام ہے, حرام, کیونکہ پتہ نہیں یہ آپ کے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے مرا ہے, پہاڑ سے یا چھت سے. تو کہتے ہیں اس صورتوں میں یہ حرام ہے. کہتے ہیں لئن الاحتراز عن مثل هذا ممکن, اس لیے کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے. آپ کچھ انتظار کر لیتے پھر تیر چلاتے تو شکار پانی میں نہ گرتا, یا شکار چھت پر یا پہاڑ پر گر کر پھر نیچے نہ گرتا. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ممکن ہے. فَإِن وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً, ہاں اگر وہ پہلے ابتدا میں ہی زمین پر گرا, آپ نے شکار کیا, ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا تھا, آپ نے تیر چلایا, اس پرندے کو تیر لگا اور وہ بلندی سے پھر نیچے سیدھا آ کر زمین پر گرا, چھت وغیرہ پر نہیں. پہلے تو کیا صورت تھی؟ چھت پر گرتا تھا, پھر چھت سے دوبارہ نیچے زمین پہ گرتا تھا, یا پہاڑ پر گرتا تھا اور پہاڑ سے پھر دوبارہ نیچے زمین پر گرتا تھا. تو جو چھت پر اگر گر کر مر جاتا پھر تو حلال تھا, پہاڑ پر گر کر مر جاتا پھر تو حلال. لیکن اب پہاڑ یا چھت سے وہ دوبارہ زمین پہ بھی گرا ہے تو پتہ نہیں شاید اس گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو, اس لیے وہ حرام. لیکن اگر ابتداءً تیر چلایا اور وہ سیدھا اوپر سے نیچے زمین پر گرا تو اس میں بھی تو احتمال ہے, اتنی اونچائی سے گرا شاید زمین پر سیدھا آ کر گرا اس لیے مر گیا. کہتے ہیں بھائی اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ شکار پرندے کا عموماً جب بھی کریں گے وہ فضا سے زمین پر تو ضرور گرے گا بھائی, لہذا ایک مرتبہ جو سیدھا جا کر گرا اس کی تو گنجائش ہے, لیکن دوسری مرتبہ اگر وہ گرتا ہے پھر اس کی گنجائش نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں او علی سطح او جبل, یا وہ شکار جو ہے وہ کسی چھت یا پہاڑ پر گرا. فتردد منہ الی الارض, پھر اس سے اوپر سے نیچے زمین پر گرا. حرام, تو حرام ہوگا. لئن الاحتراز عن مثل هذا ممکن, اس لیے کیونکہ اس جیسی چیزوں سے بچنا ممکن ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جاتا یا تھوڑا آگے تیر مارا جاتا کہ وہ ذرا آگے ہوتا. فَإِن وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً, اگر وہ ابتدا ہی میں شکار زمین پر سیدھا آ کر گرا. فَإِنَّ الْاحْتِرَازَ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ, اس لیے کیونکہ اس جیسی چیزوں سے تو بچنا ممکن نہیں ہے. فَيَحِلُّ, تو اس صورت میں وہ حلال ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.